जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे गोपाल Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Rama, 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 Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Deo. Jayo Radha Madan Gopal, Radha Madan Gopal Radhe. Jayo Radha Madan Gopal, Radha Madan Gopal Radhe. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya, Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Nitai Gaur Premanande Sri Sri Radha Madan Gopal Ji Ki Sri Sri Lalita Vishakha Radha Madan Gopal Ji Ki Sri Sri Gaur Nitai Ki Sri La Prabhupada Ki Sri Nasik Kshetra Ki ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
तो हम नासिक के दोस्तों का बहुत सौभाग्य है कि हमारे बीच में श्रीमान विश्वरूप प्रभु यहाँ से भक्तिवृंद हॉस्पिटल, इसका नाम सब जानते ही होंगे, जिसको हम धाम बोल सकते हो, नासिक का धाम बोल रहे हैं, लेकिन हम भक्तिवृंद हॉस्पिटल को धाम मानते हैं क्योंकि जिस प्रकार से सेवा वहाँ पे हो रहा है पूरे विश्व का, समाज का, बहुत सुंदर रूप से। और उसके जो फाउंडिंग मेंबर्स अगर हम कहें तो उसमें से एक विश्वरूप प्रभु है और पूरे लगन के साथ और पूरे समर्पण के साथ उन्होंने अपने की सेवा इस प्रकार से की है, बहुत आदर्श है सबके सामने। तो बहुत भाग्यशाली है प्रभु जी यहाँ पे उनका यात्रा लेके आए थे, 770 उनको नासिक दर्शन और अनुभव के साथ, और आज हमारे बीच में हम सबको दर्शन देने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। उनको धन्यवाद देंगे हृदय के साथ, इस बार जोर से हरि बोल बोल। और वही किनारो मंदिर से हॉस्पिटल से श्रीमान परोस भी यहाँ पे आए अपने परिवार के साथ, जिनकी कृपा से हम सभी सत्संग यहाँ पे कर रहे हैं, उनको भी हम धन्यवाद देंगे और पूरे परिवार को तीन बार जोर से हरि बोल।
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब लोग जानते होंगे, बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे, बहुत साल पहले यहाँ पर श्रीमान परमहंस प्रभु जी रहा करते थे और नासिक इस्कॉन मंदिर की जो नींव है वो उन्होंने ही डाली हुई है। और मैं जब सबसे पहले, प्रभु जी मुझे कल याद दिला रहे थे, 1999 में सबसे पहले मैं नासिक यात्रा लेकर आया था, वो शायद मेरी सबसे पहली यात्रा थी, अफकोर्स बरदाने के बाद में हॉस्पिटल से निकली हुई, आध्यात्मिक विभाग से निकली हुई वो सबसे पहली यात्रा थी। अच्छा हिंदी में बोला ना, हिंदी। तो उसमें हॉस्पिटल के मैनेजर्स आए थे, बहुत पुराने मैनेजर्स थे उसके अंदर, तो तभी प्रभु जी यहाँ पर थे, उन्हीं के सलाह से और गाइडेंस से हमने वो पहले यात्रा किया था और प्राण गौरंग प्रभु उसमें हारमोनियम उठा कर लेके आए थे ब्रह्मगिरी पर्वत पर। हरे कृष्ण। तो मैं प्रभु जी का बहुत आभारी हूँ, आपने उस समय नासिक के बारे में हमको बहुत गाइडेंस दिया, और वो हमारी किराए की जगह थी उस समय, ना उस समय किराए का जगह था हमारा मंदिर, और उसमें
श्री श्री गौर निताई जी विराजमान थे। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि 1992 से 93 तक मैं श्री वृंदावन धाम में निवास किया एक आश्रम में। और वहाँ से जब हम निकले वापस बम्बई आने के लिए तो हमने लोही बाजार से श्री श्री गौर निताई के विग्रह ले लिए और मीरा रोड में शिफ्ट हो गए। और मीरा रोड में जब ही शिफ्ट हो गए तभी मीरा रोड में इस्कॉन का मंदिर नहीं था, इस्कॉन का मंदिर था वो भाईंदर में था, वो भी एक किराए के अनेक सारे फ्लैट एकत्र करके एक पहले माले पे भाईंदर के पुलिस चौकी के बाजू में वो सेंटर था। तो मीरा रोड में जो सेंटर था वो हमारा घर ही था। एक हमारे सीनियर गुरु भाई हैं, बहुत सीनियर हैं, वैसे मानव प्रभुपाद जी के शिष्य हैं वो, श्रीनाथ जी प्रभु, श्रीमान श्रीमान जी प्रभु। उनके जब कन्या का विवाह हुआ तो उन्होंने राधा गोपीनाथ जी के जो विग्रह हैं वैसे ही एक विग्रह बनाइए प्लास्टर ऑफ पेरिस के, और अपनी बेटी के शादी में बहुत अच्छी तरह से रखे उसका। और उनके विवाह होने के बाद में फिर वो विग्रह फ्री हो गए तो फिर वो प्रेम लीला माता जी और राधे कृष्ण प्रभु घर में निवास करते थे। और जिस जिस का विवाह होता था उस उसके विवाह में जाते थे वो। तो फिर वो राधे कृष्ण प्रभु और प्रेम लीला माता जी के घर से वो विग्रह हमारे घर में शिफ्ट हो गए। तो हमारे एक बेडरूम में पूरा बड़ा मंदिर बनाया गया, उसमें बीच में राधा गोपीनाथ जी और गौर निताई और तुलसी देवी वगैरह रहा करते थे। फिर जब मैं 2 साल में गौर निताई और राधा गोपीनाथ जी का हमारे घर में सेवा हुआ, मंगल आरती और सब कुछ, मॉर्निंग प्रोग्राम और जितने भी छोटे मोटे जोड़े थे भक्त थे वो सब लोग हमारे घर में, और डॉक्टर्स खास करके जो शिफ्ट हुए थे मीरा रोड में, वो सब हमारे घर में मंगल आरती करते थे, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, जप, फिर उसके बाद श्रृंगार, उसके बाद भागवतम प्रवचन और ब्रेकफास्ट प्रसाद करके फिर अपने अपने काम के लिए जाते थे। फिर 2 साल के बाद में हमारा जो जीवन है वो सऊदी अरब में गया। जाना पड़ा तो उस समय हमारी पत्नी अपने पिताजी के घर में शिफ्ट हो गई और हम सऊदी अरब में गए, तभी ये श्री श्री गौर निताई नासिक में आ गए। इसलिए नासिक से मेरा विशेष संबंध है, जब मैं आता हूँ तो अपने गौर निताई को देखता हूँ, मुझे बड़ा आनंद होता है उनको देख के कि हमारे घर में 2 साल रहे। और जब भी मैं देखता हूँ यहाँ पर तो मुझे एक ही अनुभूति होती है कि हमारे घर से कई गुना हजारों गुना अधिक शांति और आनंद में यहाँ रहते हो। देखो कैसे चमक रहे हैं, हाँ इतने हमारे घर में चमकते नहीं थे वो। यहाँ पर आपके सबके प्रेम से और सेवा से और दर्शन से भाव से बड़े तेज को प्रकट कर रही हूँ। श्री श्री गौर निताय की। तो परमहंस जी का, प्रभु जी का जो हमारा नासिक क्षेत्र में ऋण है वो हम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि जब समय बीतता है आगे आगे तो नए नए भक्त आते हैं और पुराने भक्त भी कई के प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, तो फिर जो मूल इतिहास है वो सब धीरे धीरे भूल जाते हैं। राधा गोपीनाथ जी मंदिर का भी ऐसा पुराना इतिहास है। हम जानते हैं कि जब भी 1986 में हम फाइनल MBBS के एग्ज़ाम दे रहे थे तब राधा गोपीनाथ मंदिर के 2 कमरे लिए गए थे, उसमें मैं और मेरी पत्नी शिफ्ट हो गए थे फुल टाइम डिवोटी की तरह, और 5 ब्रह्मचारी रहा करते थे, उसमें से एक भी ब्रह्मचारी वहाँ पर नहीं है। लेकिन एक महाराज थे वो अभी भी हैं, उनका नाम है परम पूज्य राधानाथ महाराज। वो एक ही रूम था और एक किचन था, उसमें किचन में हम पति पत्नी रहते थे और सुबह उठ के वहीं भोजन बनाते थे ब्रह्मचारियों के लिए। तो वहीं से वो गुरुकुल था, मतलब गुरुकुल नहीं था, LNHO लेडी नॉर्थ कोट हिंदू ऑर्फनेज, वो 100 साल पुराना था, 1901 साल से वहाँ पर चल रहा है। बहुत सारे भयंकर कार्य अनाथ आश्रम के नाम से वहाँ पर होते थे। बहुत सारे, जिसको हम 4 पापों के भी आगे गिन सकते हैं, उसके भी जघन्य पाप वहाँ होते थे। तो भगवान की दया थी, लक्ष्मी नारायण जी वहाँ पर निवास करते थे और लक्ष्मी नारायण जी का भी ऐसा इतिहास है, वो तो उनसे भी पुराने हैं लक्ष्मी नारायण, जो आप 4 दिन की सेवा पर हो रही है, बहुत सुंदर मंदिर बनाए हैं। जब अंग्रेजों का समय था तो अंग्रेज जब महात्मा गांधी के पीछे लगे हुए थे तो महात्मा गांधी वो लक्ष्मी नारायण के पीछे आके छुपे थे। उसके बाजू में मणिभवन है ना, वहाँ पर वहीं पर अभी महात्मा गांधी जी का ऑफिस और आश्रम जो भी कह सकते हैं वो है मणिभवन ऐतिहासिक। तो कई बार उन्होंने लक्ष्मी नारायण जी का आश्रय लिया है और फिर भगवान की दया से वो जो सेंटर है मतलब जो क्षेत्र था उधर का, वो 2 कमरे लिए गए, फिर धीरे 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 आप देख रहे ना भगवान को उंगली दिया तो भगवान ने पूरा ही ले लिया कम्प्लीटली। उसके ऊपर वो बीके अयंगार जो योगी अभी इनका देहांत हो गया ना, बड़े महान बड़े ख्यात नाम बड़े प्रसिद्ध और बड़े आदरणीय योगी थे वो बीके एस अयंगार, योगा फॉर हेल्थ उन्होंने किताब लिखा है। उनका योगा क्लासेस वो अपने टेम्पल हॉल में चलता था और राधा गोपीनाथ के विग्रह छोटे छोटे थे, जो आपके जो विग्रह इससे भी छोटे विग्रह थे और वे एक लकड़ी के मंदिर में रखते थे उसको। जब हम लोग कीर्तन करते थे तो वो भी नाचते थे हमारे साथ क्योंकि फ्लोर इतना अनस्टडी हुआ करता था क्योंकि 100 साल से पुराना बिल्डिंग है वो। जब हम लोग नाचते थे तो फ्लोर सब ऐसा ऐसे ऐसे हिलता था और नीचे एक स्कूल था टिंकर बेल हाई स्कूल जहाँ मेरी बेटी भी पढ़ती थी, तो वो स्कूल में ऊपर की डस्ट नीचे गिरती थी जब वो लोग नाचते थे तभी तो ऊपर से नीचे डस्ट गिरती थी और विद्यार्थी लोग डरते थे कि ऊपर क्या हो रहा है कब गिरेगा ये दीवार हमारे ऊपर सीलिंग। और गौर और राधा गोपीनाथ जी भी ऐसे 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 नाचते थे। उसके बाद में फिर एक दीपक गोलराजा ने थे, उन्होंने राधा गोपीनाथ जी के विग्रह डोनेट किए। राधा गोपीनाथ जी का 1987 में स्वागत किया गया फिर एक वहाँ पर माय ओन क्लासेस थे, क्या क्या था उधर, अनेक लोगों का वहाँ पर सहजीवन था, सब सहजीवन को हमने उद्ध्वस्त कर दिया वो जो माया ओजिन कौन कोचिंग क्लासेस थे उधर, हमारे वैष्णव सेवा प्रभु ने हरे कृष्णा लाइब्रेरी खोला, सबसे पहले जो ऑडियो लाइब्रेरी था वो हमारे जय जी हॉस्पिटल में थे। 26 दिसंबर, अभी आज का तारीख है 28 दिसंबर, हाँ 26 दिसंबर 1986 में राधानाथ महाराज जी का एक जे जी हॉस्पिटल में प्रोग्राम हुआ था। वो ऐसा प्रोग्राम मेरे ख्याल से आज तक कभी नहीं हुआ, एनाटॉमी हॉल में प्रोग्राम हुआ था। एनाटॉमी हॉल वेरी प्रेस्टिजियस हॉल, वेरी बिग, ऐसा 4 मंजिल का एक बिल्डिंग है, उसमें तो मंजिल कुछ भी नहीं है, इससे क्लासरूम ऐसे हैं स्टेप्स में, आपको ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, लास्ट नंबर 200 नंबर जो है वो सबसे ऊपर की मंजिल में बैठा रहता है और सिखाने वाला ग्राउंड पे रहता है, जो एकदम विपरीत है हमारे वैदिक संस्कृति के अनुसार, जो जिसको ज्ञान देना है वो सबसे नीचे, तो ज्ञान लेना है वो सबसे ऊपर 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 ऊपर। हमारी वैदिक संस्कृति कहती है कि जो ज्ञान देने वाला होता है प्रवचनकार होता है कथाकार लेक्चरर जो होता है वो सबसे ऊपर होना चाहिए और जो श्रवण करने वाले ग्रहण करने वाले हैं वो सब नीचे होने चाहिए। लेकिन उस हॉल में 200-300 लोग आराम से बैठ और 1000 लोग भी बैठ सकते थे। तो उस हॉस्पिटल में उस प्रोग्राम में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बहुत लोग आए थे डॉक्टर्स वगैरह वगैरह। तो प्रोग्राम के बाद में हिज ग्रेस वैष्णव सोया प्रभु आए महाराज के पास, महाराज जी मुझे आपसे और संग करना है, तो वो महाराज की गाड़ी में घुस गए फिर महाराज जी गए डॉक्टर श्री गोविंद प्रभु के घर में प्रोग्राम करने के लिए। और पूरी दोपहर में वहाँ पर डॉक्टर विमल शाह ने बहुत सारे प्रश्न किए और वो शाम तक डिवोटी बन गए फिर एक मैगजीन निकलता था उसके अंदर नाम भी आया उनका, न्यू डिवोटी फ्रॉम जे जे हॉस्पिटल विमल शाह। उसके बाद में उनकी दीक्षा भी हुई, तो उन्होंने वहाँ पर हरे कृष्णा लाइब्रेरी शुरू किया और बहुत सुंदर मंदिर का हमारा इतिहास है। उस समय भक्त कम थे और चूहे ज़्यादा थे उधर व्यूज यू नो, जब मैं किचन में सोता था हमारे शरीर के ऊपर से कई ऐसे चूहे जो है ब्रिज पार करते थे यहाँ से वहाँ अनेक बार अनंत। और दीवालों में ऐसे दीवाल दिखती नहीं थी, पेंट पूरे कॉकरोच भर रहते थे पर आई रिमेम्बर फुल कॉकरोच, नॉट अ सिंगल इंच फ्री। वो स्तुति में था लेडी नॉर्थ को हिंदी ऑर्फनेज। तो उसमें जब परम पूज्य राधानाथ महाराज जी के चरण कमल गिरे तो फिर सारा आमूलाग्र परिवर्तन हो गया उसके अंदर। जब कोई संत प्रवेश करता है ना किसी जगह पर, तो जो अपन म्हणतो मराठी मध्ये होत्याचं नव्हतं झालं, म्हणजे जे होतं वाईट ते नष्ट झालं, ऑल इनऑस्पिशियसनेस डिसअपियर्ड, नॉन ऑस्पिशियसनेस, ट्रान्सेंडेंटल ऑस्पिशियसनेस अपियर्ड। उधर वो बेंच पे बैठते थे, छोटा सा कमरा था, कुछ नहीं था उधर उस समय, वहाँ पर रहते थे और इतने फ्री हुआ करते थे, इतने फ्री हुआ करते थे कि लोगों से जा जा के मिलते थे। यस प्रभु जी, सकेला आई मीट यू एंड टॉक टू यू, व्हाई डोंट यू कम टू मीट मी, आई एम वेटिंग फॉर यू इन टेम्पल। आपको लगे कितना स्वप्नवत स्थिति है ये, हाँ कि महाराज जी आपको पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं आते मुझे मिलने के लिए, मैं बैठा हूँ आपके लिए। तो 1900 फिर उसके बाद तुरंत मैं जे जी हॉस्पिटल गया, उसके बाद मैं फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर लेडी हिंदी नॉर्थ हिंदू नॉर्थ लेडी और नॉर्थ कोट हिंदू ऑर्फनेज को, उसमें अरविंद मुफद्दलाल जी और श्रीनाथ जी प्रभु दोनों ट्रस्टी थे, तो उनके विश्वस्त होने के नाते वो हमारे पास आ गया, मंदिर के पास आ गया। फिर मंदिर ने गुरुकुल को अपने हाथ में लिया और जो भी ट्रिमिंग करना था उसको वो कर दिया पूरा ठीक तरह से, अच्छा नियम बनाया। राधा गोपीनाथ प्रभु गुरुकुल के इंचार्ज बने और बच्चों को बहुत सुंदर ट्रेनिंग मिलने लगा, सब गंदे बच्चों को निकाला गया, जीर्णोद्धार हो गया पूरा उसका कम्प्लीटली एकदम। आज वो गुरुकुल वाड़ा में बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है, मैं जब गया था देखा था कितने भाग्यशाली बच्चे हैं, हाँ चाहे अनाथ होंगे अपने कर्मों के अनुसार, लेकिन वही उनका भाग्य है कि वो अनाथ हो गए, नहीं तो वो राधा गोपीनाथ के राधा वृंदावन बिहारी के चरणों में कैसे पहुँचते हैं। इतना सुंदर जीवन जी रहे, वो गाय की सेवा कर रहे हैं, वन में विहार कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फल खाते हैं, ऑर्गेनिक फूल खाते हैं, ऑर्गेनिक धान्य खाते हैं, ऑर्गेनिक भक्तों के साथ में रहते हैं। हाँ भक्त यार प्योरली ऑर्गेनिक है बाय द वे, प्लीज अंडरस्टैंड, कोई वाइस नहीं, कोई बुरी आदत नहीं, केवल अच्छी अच्छी आदतें लगी हुई हैं, तो उससे ऑर्गेनिक पीपल है ना। उनके सान्निध्य में 100 से अधिक गायों की सेवा करते हैं, वो भी ऑर्गेनिक मतलब प्योर धारपारकर गिर जाति की गाय, शुद्ध दूध अहिंसा दूध पीते हैं। सौभाग्य किसको प्राप्त होता है, शहर में जो करोड़पति लोग भी रहते हैं उनको वो नहीं प्राप्त होता है, वो उनके गरीब लोगों को प्राप्त होता है। तीसरा से 92 में 87 में मैं राधा गोपीनाथ मंदिर को कुछ दिन था फुल टाइम, फिर मैं जे में गया, उसके बाद में मैं ऋषिकेश गया, उसके बाद में वापस मुंबई आया और उसके बाद में मैं फिर बेघर हो गया। एक समय में मैं बहुत समय बेघर ही था, लेकिन बेघर और बेघर दोनों था। तो महाराज जी ने कहा कि अभी वापस घर नहीं है आपका, तो आ जाओ मंदिर में आ जाओ, मंदिर के लिए सबके लिए जगह है। उन्होंने एक बार कृष्णचंद्र प्रभु को ही बताया था कि जब भी आपको डिफिकल्टी होगी ना आप मंदिर में आना, मंदिर में बहुत जगह है। क्योंकि उसका बिजनेस जो है उस समय काफ़ी डिफिकल्टी से गुजर रहा था, एक समय था मुफ्तलाल इंडस्ट्री में बहुत कठिनाई चल रही थी, बहुत ही बिकट, मतलब ऐसे मैंने बचपन में सुना था कि जो ख्याति से और किसी तरीके से बड़े होते हैं उनकी समस्याएं भी बड़ी होती है हमेशा, हम लोग समझ नहीं सकते। तो वो महाराज से चर्चा करते थे हमेशा, तो एक समय ऐसा चर्चा में ऐसा विषय आया तो इमे से ही सेड कि आई मे ऑल्सो हैव टू लूज माई प्लेस ऑफ स्टे ऑल्सो इन द होल थिंग, जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वो भी मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। तो महाराज ने कोई बात नहीं, राधा गोपीनाथ मंदिर में आ जाओ, एक कमरा दे देंगे आपको। तो उसी मंदिर में महाराज ने मुझे कहा कि आ जाओ आप मंदिर में बना देंगे। तो समय मंदिर इतना मतलब कम जगह थी उधर, तो भक्ति रसामोद महाराज तभी देवामोद प्रभु थे और वो अध्यक्ष थे मंदिर के, उन्होंने कहा कि एक भी कमरा आपके लिए खाली नहीं है, आप कैसे आएंगे यहाँ पर। तो वैष्णव प्रभु जो हरे कृष्ण लाइब्रेरी में थे उनको लगा कि नहीं नहीं इनको तो कमरा देना चाहिए किसी भी हालत में। तो उन्होंने कई दिन तक इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया और बहुत सारा जैसे वो कैसे है ना वो आपका मंदिर अभी ऐसा है ना तुम जो उनके हाथ में देंगे आप और 10 दिन के बाद लौट के आएंगे तो आपको पूरा डिफरेंट मंदिर मिलेगा, वो यहाँ की दीवार उधर, उधर की दीवार इधर, उधर का बालकनी इधर, सब ऐसा करके आपको एकदम अचंभित कर देंगे। तो उन्होंने वही दिमाग जो है वो लगाया और अल्टीमेटली देवाम प्रभु को कन्विंस कर दिया कि ये गिफ्ट गेस्ट रूम जो है इनको यहाँ पर शिफ्ट करो, उधर से वहाँ करो, फिर ये यहाँ से करो, फिर ये जो है वो खाली हो जाएगा, उसमें विश्वरूप दास को कमरा दे दो। तो फिर वो भी कन्विंस हो गए। फिर हम 1 मई 1992 को राधा गोपीनाथ मंदिर में आए, 1990 में 1 मई को आ गए और हमारा कमरा था वो राधानाथ महाराज जी के एकदम बाजू में था और बीच में एक कार्डबोर्ड की दीवार थी, सीमेंट की नहीं थी, कार्डबोर्ड की दीवार थी। तो महाराज जी कहते थे कि विश्वरूप दास और ब्रजेश्वरी देवी के बाजू में कार्डबोर्ड की दीवार के डिवीजन के उस पर रहकर मैंने ये जीवन में अनुभूति प्राप्त की कि मुझे सन्यासी रहना चाहिए। He said I was again and again, multiple times I was convinced and was convincing myself to continue in sannyas ashram. और कई बार जब कार्डबोर्ड के गृहस्थ की तरफ, गृहस्थ आश्रम की ओर जब शोर बढ़ता था तो वहां से वो टक 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 करते थे। ऐसा है। तो तब जब वॉल्यूम कभी बढ़ती थी तो कभी टक टक करते थे और टक टक का अगर परिणाम नहीं प्राप्त हुआ तो खुद आते थे। और जब भी हम समझो अभी सब कुछ हो गया तो टाइम है तब भी जाते थे महाराज के कमरे में और बैठ के कई घंटे बातें करते थे। ऐसा दिन, ऐसे दिन थे वो। कभी भी एनी टाइम यू जस्ट वॉक इन एंड टॉक टू महाराज, जस्ट ब्यूटिफुल डेज। फिर राधानाथ महाराज जी तो वो वहाँ पर आने के पहले एक मलबार हिल में सिन्हाजी प्रभु ने एक मुझे रहने को घर दिया था। मलबार हिल मतलब क्या, राजभवन के बाजू में, नेक्स्ट बिल्डिंग इज राजभवन, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र इज नेक्स्ट टू मी, एकदम समुद्र किनारे। बहुत अच्छा घर दिया था, किसी से उनका बिजनेस का कुछ डीलिंग था, उन्होंने कहा कि इसके अगेंस्ट एक हमारे गुरु भाई है उनको घर दे दो आप कुछ दिन रहने के लिए, एक महीने के लिए दिया था। तो एक महीने के बाद फिर उसने पूछा कब जा रहे हो, तो सिन्हाजी प्रभु ने बताया कि वो एक बड़ा प्रोजेक्ट रिसर्च कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा उनको और। ऐसे हमारा प्रोजेक्ट जो था 14 महीने चला। और 14 महीने में राधानाथ महाराज ने वहाँ पर कितने प्रोग्राम किए। मुझे अभी भी याद है हमारे माधवानंद प्रभु जब भी उन्होंने MD पूरा किया पीडियाट्रिक्स में, तो महाराज ने कहा कि पार्टी होनी चाहिए, तो हमारे घर पे उसकी पार्टी भी हुई थी और हम लोग ने कहा झूम झूम के राधे 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 कीर्तन किया था। उसमें महाराज जी हारमोनियम बजा रहे थे और बहुत देर तक महाराज जी, जब मैं रुका तो महाराज ने कहा वंस मोर ऐसे करके कई बार मैं रुका, महाराज ने कहा सम मोर करके वो राधे राधे कीर्तन उसमें किया और माधवानंद प्रभु MD की जय, ऐसे महाराज ने जय घोष किया और बहुत आनंद रहा उसमें। और नेक्स्ट डे संडे था तो महाराज ने प्रवचन दिया तो महाराज ने बुलाया फिर से वो राधे राधे करो। फिर राधानाथ गोपीनाथ मंदिर में भी नेक्स्ट डे वो राधे राधे कीर्तन हुआ, बहुत धूमचूम नाचते वस्ते। तो ऐसे सुंदर, और उस जो वो जो फ्लैट था मलबार हिल का, उसमें आदिकेश्वर प्रभु, डॉक्टर अलवा, अक्रूर प्रभु, कृष्ण प्रेम प्रभु और इनका सबका परिवार के सदस्य, ये सब लोग उसमें डिवोटी बने। केवल 3-4 लोगों को मिलने के लिए आते थे और हमेशा प्रोग्राम हर वीक में केवल यही 4-5 लोग हुआ करते थे और पर्सनल 1-to-1 महाराज उनको प्रीचिंग करते थे ना। सुंदर, तो मुझे आप समझे ना रिसर्च क्या चल रहा था हमारा 14 महीने के लिए। फुल्ली फोकस्ड प्रोजेक्ट था वो। और ये जब पूरे अच्छी तरह से डिवोटी बने तो फिर हम वहाँ से शिफ्ट हो गए और राधा गोपीनाथ के चरणों में आ गए, फिर महाराज के बाजू में रहे। और महाराज जी इतने हम्बल तरीके से रहते थे वहाँ पर। एक कॉमन टॉयलेट था जब हम लोग साथ में सब यूज़ करते थे उसको, महाराज जी वेट भी करते थे कोई बंद है भाई चलो बाद में जाएंगे इस तरह से। और प्रेमा भक्ति माता जी, मधुसूदन प्रभु भी रहते थे वहाँ पर फुल टाइम डिवोटीज़ के रूप में। राधे राधा कृष्ण प्रभु और पालिका माता जी नीचे रहते थे, जहाँ पर हम पहले रहते थे उधर वो आ गए वो अमेरिका में थे, उधर से आ गए और मंदिर में शिफ्ट हो गए हैं। तो हम तीन गृहस्थ वहाँ रहते थे और वैष्णव सेवा प्रभु हरे कृष्ण लाइब्रेरी चलाते थे। तो जब कोई संत किस क्षेत्र में अपने पांव रखता है तो बहुत अमूलाग्र परिवर्तन आता है उसके अंदर। मुझे अभी भी याद है, कुछ बहुत इको क्यों आ रहा है। हरे कृष्ण, हाँ ठीक है। तो राधा गिरधारी प्रभु हमारे जो हैं वो मैस्टेक कंपनी में डायरेक्टर थे पहले, बहुत कम उम्र में विश्व के बड़े कंपनी के डायरेक्टर बने वो, लेकिन बहुत कम उम्र में उन्होंने वो छोड़ भी दिया। उन्होंने कहा कि अरे अगर डायरेक्टर बनकर मैं करोड़ों रुपए का इनकम कंपनी को दे रहा हूँ तो मैं खुद बिजनेस करूँगा और फिर उसका सब धन दौलत जो है वो राधा गोपीनाथ को दूंगा। तो उन्हें छोड़ के अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन बिजनेस एकदम जैसे मानो लगता रहा था कि गलती कर दिया उन्होंने, क्यों कर दिया सबको ऐसा, ऐसा स्थिति हो गई। उनका बड़ा ऑफिस था, उसमें कोई स्टाफ नहीं, कद्दू स्टाफ, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई बिजनेस नहीं हो रहा है। तो एक दिन राधानाथ महाराज सिंगापुर गए, सिंगापुर की अमेरिका कहीं भी एक जगह गए, उनके बिल्डिंग में गए महाराज। उन्होंने कहा कि महाराज प्लीज़ कम टू माई ऑफिस ऑल्सो, आ गए। और वो बताते हैं कि जिस दिन महाराज ने वहाँ पर कदम रखा उनका बिजनेस इतना बूम हो गया, इतना बूम हो गया वेरी नाइसली। इसे ऑल ग्लोरीज ऑल एट्रीब्यूट्स राधानाथ महाराज, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर कदम रखा और उनका बिजनेस। अभी आप जानते हैं, अभी मैं आपको लगता होगा मैं बिजनेस का वृद्धि हो गई इसकी बातें भागवतम में क्यों कर रहा हूँ, है ना। उसका कारण यह है कि उनके बिजनेस में, बिजनेस शुरू होने के पहले से ही राधा गोपीनाथ जी महाराज, हमारे राधा गोपीनाथ भगवान 50% पार्टनर थे। हाँ, ये बहुत अनोखा उदाहरण है। आज भी जो भी उनका बिजनेस होता है उसमें 50% डायरेक्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन गुरु राधा गोपीनाथ टेम्पल। तो ये इसलिए मैंने आपको बताया है क्योंकि भगवान की सेवा में जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन को समर्पित करता है और चाहता है कि मैं कमाऊं भी उनके लिए कमाऊं, तो सब उनका ही है। तो राधा गोपीनाथ जी को उनको समृद्धि देनी ही थी क्योंकि उनकी सेवा में कर रहे सब कुछ। तो ये शुद्ध भक्त के हमारे जीवन में आने का परिणाम है, न केवल बिजनेस में। बिजनेस तो बाहर की चीज़ है, वो आज खत्म होगी, कल रहेगी, हम भी नहीं रहेंगे, कल परसों भी नहीं रहेंगे, वो बात तो ठीक है, लेकिन जो समृद्धि हमारे हृदय में होती है वो चिरंतन होती है। प्रभुपाद जी ने जो दंडी दिखाकर दिखाया था कि यहाँ मंदिर होना चाहिए, हाँ, वो भी एक प्योर डिवोटी थे। वो भारतीय विद्याभवन से नीचे उतर रहे थे अपना गीता का सेमिनार प्रवचन दे के, और श्याम सुंदर प्रभु को उन्होंने अपने केन से दिखाया कि यहाँ पर एक हरे कृष्ण मंदिर होना चाहिए। आज जो मंदिर है, ऐसे ही प्रभुपाद जी ने एक बार न्यू वृंदावन में कहा था, 7 पर्वत थे, ऐसा घना जंगल, 3,000 एकड़ की जगह, एकदम घनघोर जंगल और घनघोर ठंड, ऐसी जगह थी वो। तो प्रभुपाद जी राउंड ले रहे थे, उन्होंने कहा कि ये पर्वत है ना, इसका ये शिखर काट दो और यहाँ पर एक मंदिर बना दो, ये जो है ना यहाँ पर से नदी होनी चाहिए, यहाँ पर है ना मंदिर होना चाहिए। ऐसा कुछ अद्भुत अकल्पनीय योजना उन्होंने बताई। तो लोगों को लगा प्रभुपाद को क्या हो गया, तो व्हाट इज प्रभुपाद थिंकिंग, नॉट प्रैक्टिकल। पहाड़ के चोटियों को काट कर उधर पठार बनाना, उधर जगह बनाकर मंदिर बनाना, इज इम्पॉसिबल। प्रभुपाद इज लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस कि क्या सोच रहे हैं प्रभुपाद जी, कि नामुमकिन बातें कैसे को सोच सकते हो। लेकिन भाइयों और बहनों आपको पता होना चाहिए जो उन्होंने कहा वो सब हुआ, बाद में सब कुछ हुआ जो उन्होंने कहा था, जो उन्होंने बताया था, जहां जहां बताया था वहां वहां भी हुआ। लोगों ने अपने हाथ से सब कुछ तोड़ फोड़ के मंदिर बनवाया, यहाँ तक कि प्रभुपाद पैलेस ऑफ गोल्ड जो है ना वो सब भक्तों के हाथ से बना हुआ है, एक्चुअल बाय हैंड्स एंड फिंगर्स। इसलिए संतों की वाणी को कभी भी कैजुअली नहीं लेना चाहिए। तो कुछ भी बोलते रहते, क्या उनको, उनको क्या मालूम हमारे जीवन में क्या क्या समस्या है, हाउ डज ही नो। हमारे घर में पत्नी है, बच्चे, उनके घर में क्या क्या तकलीफ होती है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनको कैसे पता है। वो अपने बोलते जाते हैं ये करो वो करो वो करो, बट लेकिन जिनको श्रद्धा है और पता है कि जो भी कुछ बोल रहे हैं अभी आज असंबद्ध और अकल्पनीय लग रहा है, लेकिन ये वास्तव में उतरेगा कुछ दिन के बाद, क्योंकि भगवान जो होते हैं ना वो अपने भक्तों पर इतना प्रेम करते हैं कि भक्त जो भी कहता है वो दिल से उसको पूरा कर देते हैं, चाहे वो कितना भी इम्प्रैक्टिकल, इनकंसीवेबल, इम्पॉसिबल क्यों ना हो, क्योंकि मेरा भक्त कह रहा है इसलिए भगवान उसको मुमकिन कर देते हैं, शक्य कर देते हैं, वास्तव में आ जाता है वो चीज़। उसी तरह से जैसे ही महाराज ने वहाँ रहना आरंभ किया, मंदिर में परिवर्तन आता गया, और उस मंदिर का सार क्या है, वैष्णव कम्युनिटी, हाँ वैष्णव समाज जो है उसका निर्माण करना, उसको जोड़ना, उसको बुनना। हमारी माताएं गर्मी के मौसम, सर्दी के मौसम में बैठ के वो बनाती ना, इतना सारा वूल होता है दोरे के रूप में, कुछ दिन बाद में उसका वस्त्र बन जाता है, तो पहनने लायक होता है, उसमें दो भुजाएँ होती है, उसके अंदर बटन होते हैं, उसके अंदर कॉलर होती है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कई दिन तक वो ऐसे बुनते रहते हैं बातें करते हुए, ना बीच में जब भी कोई मेहमान आया तो भी वो करते रहते हैं, कितना लगन से कई दिन तक बनते हैं, बनाते हैं, तो फिर कुछ दिन बाद में उसका वो धागे का बंडल था गोल, उसका रूपांतर एक स्वेटर में हो जाता है, एक टोपी में हो जाता है, फिर प्रभुपाद के शीश पर आ जाता है ना। उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, उसको ठीक से अच्छी तरह से बनाकर, उनके शीश के माप का होना चाहिए, उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए, उसमें दिखना भी अच्छा चाहिए, फोल्ड भी होना चाहिए। उसी तरह से वैष्णव समाज को बनाने में, बुनने में बहुत शक्ति और योजना और शुद्धि, हृदय की प्रामाणिकता लगती है, तब जाकर वैष्णव समाज बनता है। और जब एक आदर्श वैष्णव समाज लोगों के सामने आता है, तब बाहर के लोगों को उनको देखकर प्रेरणा मिलती है कि हाँ मुझे भी ये समाज ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मुझे बाहर कुछ प्रेम नहीं मिल रहा है, कुछ इतने संकट है, सब लोग ऐसे व्यवहार करते हैं, दुनिया में इतने कष्ट हैं, इतनी शांति है, परेशान हो गया हूँ मैं, और मैं इनको देख रहा हूँ, ये सब लोग विवाहित हैं, सब गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, सब प्रकार के लोग इसके अंदर हैं, बड़े बूढ़े हैं, नौकरी वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, सब लोग हैं इसके अंदर, लेकिन कितने प्रेम से रहते हैं, हमेशा हंसते हुए दिखाई पड़ते हैं, हमेशा नाचते रहते हैं, झूमते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं, घूमने चले जाते हैं, यात्रा में जाते हैं, कथा सुनते हैं और बहुत बढ़िया प्रसाद खाते हैं। सबसे पहला अट्रैक्शन मुझे पहले बोलना चाहिए था एक्चुअली, भोजन इतना बढ़िया करते हैं, बाप रे, गरीब से गरीब आदमी भी साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उस भोजन को ग्रहण करता है, हाँ बड़ा बड़ा उद्योगपति और बड़े से छोटे छोटे आदमी भी बैठ के प्रेम से खाना खाते हैं, हाथ पकड़ कर झूम झूम के नाचते हैं, बहुत बढ़िया जिंदगी है, मुझे भी बनना है ऐसे, फिर जुड़ जाते हैं। तो पुस्तक वितरण और डीटी वर्शिप और प्रसादम वितरण, ये सब उसके बाद में होता है, पहले होता है निटिंग, पहले समाज बनता है, छोटा सा क्यों ना, उनके माध्यम से फिर वो डीटी वर्शिप, फिर डीटीज आती हैं, फिर भोजन वितरण होता है, प्रसाद, फिर किताब वितरण होता है, भक्त चाहिए ना उसके लिए, पहले भक्त बनाना पड़ता है, उसको बुनना पड़ता है ठीक से। तो ये सब शुद्ध भक्त का प्रभाव है, उनके आध्यात्मिक जो लहरें हैं, उनकी चेतना जो है उसका प्रभाव क्षेत्र का ये परिणाम है। और वही शुद्ध भक्त जो हैं वो सबके हृदय में भगवान का मंदिर बनाते हैं। बाहरी ये मंदिर जो है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, सबको एकत्र होने के लिए, कृष्ण भावना को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, लेकिन बाहर मंदिर में हम लोग क्यों आते हैं, जो भी बाह्य दिख रहा है हमको, स्ट्रक्चर दिख रहा है, मंदिर दिखाई पड़ रहा है, लकड़ी का काम दिखाई पड़ रहा है, इसमें हम आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बार 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 आके हमको अपने हृदय में मंदिर बनाना है। जब हृदय में मंदिर बनेगा तो फिर ये मंदिर का पर्पज़ वो सक्सेसफुल हो गया, सफल हो गया मंदिर, ये तो आपके हृदय में मंदिर बनाएंगे। तो ये शुद्ध भक्त की कृपा होती है कि वो आपको बाकी सारे बाहरी माध्यमों को ऐसे उपयोग में लाते हैं कि हर एक व्यक्ति के हृदय में भगवान का मंदिर बस जाए, भगवान स्वयं उनके मंदिर में बस जाए। कृष्ण को देते हैं वो, जो कृष्ण हृदय में है हमारे, लेकिन कृष्ण हृदय में होते हुए उनको हमारे लिए अनुभूति योग्य बना देते हैं, वो तो है ही वहाँ पर, लेकिन ऐसे हमारे हृदय में मंदिर का वातावरण निर्माण करते हैं कि जो हृदय में सुप्त अवस्था में हैं, छुपे हुए हैं, वो प्रकट हो जाते हैं। फिर कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण सेवा में हमको लगा देते हैं, फिर हमारा जीवन जो है पूर्ण कृष्ण में हो जाता है, और यही जीवन की प्राप्ति है। मनुष्य बनकर अगर कृष्ण भावना नहीं ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन जो है वो शव समान है, आप लोग सोचिए इसके बारे में, शव कैसा होता है, उसमें कुछ चेतना नहीं होती, सब कुछ है लेकिन कुछ कर सकता नहीं, वो उसमें बदबू आती है, वो जलाने के दफनाने के योग्य होता है, उसको कोई रखते नहीं, कुछ आते नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, इज़ अ रिपल्सिव सिचुएशन, हाँ लोग उसे घृणा करते, चलो भाई कितना भी प्रेमी व्यक्ति जल्दी ले चलो, कब जल्दी कब लेके जा रहे हो, कितना टाइम है, 4 बजे, चलो जल्दी ले जाओ, अगरबत्ती लगाते हैं, कुछ गोबर लगा देते हैं, यू कांट स्टैंड इट फॉर लॉन्ग टाइम, कितने भी प्रिय व्यक्ति का शव क्यों ना हो, माता का हो, बालक का हो, किसी का भी हो, शव हो गया तो फिर उसको थ्रो इट अवे क्विकली, वो एक फेंकने योग्य वस्तु बन जाती है। तो कृष्ण के बिना हमारा जीवन भी वैसे ही है, शव समान, यूजलेस, फेंकने योग्य, जलाने योग्य, दफनाने योग्य, बदबू वाला, हाँ कष्ट वाला, पीड़ादायक, वो सब अनेक विशेषण लगा सकते हैं उसको, वो सब कृष्ण के बिना होने की अवस्था है। और ये कृष्ण को हमको शुद्ध भक्त देते हैं, द प्योर डिवोटीज दे गिव श्री कृष्ण, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्ति आछे, आपके पास वो शक्ति है हे वैष्णव, कि आपके पास वो शक्ति है क्योंकि आपके पास कृष्ण है, और वो कृष्ण आप दूसरों को दे सकते हो, कृष्ण देते पारो, तुम्हारी शक्ति आ चाहिए, आपकी शक्ति है, आपका प्रभाव है, आपका ये बल है कि आप दूसरों को वो कृष्ण को दे सकते हो। आमी तो कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली, धाए तब पाछे पाछे, मैं बड़ा कंगाल हूं, शव समान हूं, मुझमें कृष्ण नहीं है, मैं आपके पीछे भाग रहा हूं, दे दीजिए मुझे। अमित कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली, धाए तब पाछे पाछे, मैं आपके पीछे पीछे भाग रहा हूं। हम सबकी भावना ऐसी होनी चाहिए, तब हमें कृष्ण प्राप्ति होती है। जब तक हृदय में हमें हमारे कृष्ण के लिए वो तड़प नहीं पैदा होती है, तब तक वो दे भी सकते नहीं हमको, बाहरी रूप से आपको कुछ फॉर्मेट दे देंगे, लेकिन जब तक हृदय में वो कशिश, वो तड़प नहीं उत्पन्न होती है, तब तक हम मिलने के लिए वस्तु तो तैयार है लेकिन हम ले भी सकते नहीं उसको, वी कांट इवन एक्सेप्ट इट। तो श्रील प्रभुपाद जी ने वृंदावन में थे, संन्यास लिया गृहस्थ आश्रम छोड़कर, फिर वो राधा वंशी गोपाल मंदिर में आए, राधा वंशी गोपाल मंदिर में उन्होंने भगवद गीता का अनुवाद किया। तो मेरे एक मित्र है वृंदावन में, वो जो कमरा है जहाँ प्रभुपाद रहते थे वो मित्र के अभी कब्जे में है, वो उसमें रेंट किया उसको, वो एकदम बहुत सुंदर एक पहली मंजिल पे है, वो बिल्कुल केशी घाट के पास में है, और उधर जमुना जी का बहुत सुंदर दर्शन है उस खिड़की से जहाँ बैठकर प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का अनुवाद किया था, जो भगवद गीता हम लोग अभी वितरण करते हैं उसको। एकाग्र होकर पूर्णता कृष्ण के ऊपर समर्पित रहकर एकाग्र भावना से उन्होंने एकांत में उसका अनुवाद किया था। फिर उसके बाद में उनको राधा दामोदर मंदिर जी के जो क्या नाम था गोस्वामी का वो को एनीवेज उन्होंने उनको निमंत्रण दिया कि आप हमारे मंदिर में आइए। तो प्रभुपाद ने समझा कि ये कृष्ण की दिव्य योजना है कि पूरे गौड़ीय संप्रदाय का वो एक प्रचार का केंद्र है, प्रचार का क्या कहते हैं उसको, हब यानी कि आस है वो पृथ्वी का, जहाँ पर रूप गोस्वामी जी और शेख गोस्वामी जी उन्होंने बैठकर वहाँ पर योजना बनाई थी कैसे प्रचार करना है, सारा जो विचार मंथन विश्व को कृष्ण भावना में बनाने के लिए वो सब वहाँ पर हुआ करता था। रूप गोस्वामी निवास करते थे वहाँ पर, जब राधा गोविंद जी का मंदिर निर्माण अधीन था उसमें रूप गोस्वामी वहाँ पर निवास करते थे, और वहीं उन्होंने उनका शरीर जो समाधि में रखा गया वो समाधि भी है, भजन कुटी भी वहीं है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी एनीवेज बहुत सारे गोस्वामी वहाँ पर जीव गोस्वामी के सानिध्य में वहाँ पर चर्चा करते थे रूप गोस्वामी के बाद भी, और वहाँ पर उनको स्वतः आमंत्रण आया, प्रभुपाद जी ने अपने आप को धन्य समझा बहुत, वो शिफ्ट हो गए वहाँ पर। उनके जो कमरे हैं वो छोटे से कमरे हैं, एक बैठने का कमरा है और एक रसोई है, और रसोई में खिड़की थी और खिड़की से रूप गोस्वामी का समाधि का दर्शन हुआ करता था। प्रभुपाद जी कहते भी थे, बताया उन्होंने कि आखिर में जब उन्होंने वहाँ पर बैठकर बहुत कष्ट से श्रीमद् भागवतम का लेखन किया प्रथम स्कंद का। वो जो गोस्वामी जी है ना अभी के, निर्मल चंद्र गोस्वामी है उनका नाम, वो तभी बच्चे थे बहुत छोटे से, उनके पिताजी वहाँ पर थे, तो वो अपनी यादें बताते हैं, हमारे अच्छे संपर्क है उनसे, बताते हैं कि प्रभुपाद जी वहाँ पर इतने मग्न हुआ करते थे उस अनुवाद को करने के लिए और तात्पर्य के लिए, कि ये गोस्वामी जी उनके भोजन के लिए दोपहर का भोजन उनके दरवाजे पर रखते थे, उनको डिस्टर्ब नहीं करते थे क्योंकि वो बिजी हैं, ले लेंगे उसको, तो रात को शयन तक वो प्लेट वहीं पड़ी रहती थी, इतने प्रभुपाद जी उस तात्पर्य को लेने में मग्न रहा करते थे। तब भूख प्यास से परे जाकर कृष्ण में लीन होकर जन सामान्य के करुणा से पूरी तरह प्रभावित होकर, हाँ, मूव्ड बाय द कंपैशन फॉर द कंडीशन सोल्स ऑफ दिस वर्ल्ड सफरिंग पीपल, प्रभुपाद उसमें एकाग्र होकर तात्पर्य लिखा करते थे। और रात में फिर जब उनको होश आते थे एक तरह से, तब वो भोजन करते थे। और रात को कभी कभी वो कहते थे, कभी प्रभुपाद जी कभी कभी लोई बाजार में, तब लोई बाजार तो एक सामान्य गांव का बाजार था, अभी आप किसी गांव में जाएंगे ना, वो सोमवार को थोड़ा बाजार लगता है, तो बहुत बड़ा होता है, फिर भी वो सब लगे लोग आते हैं, लेकिन अगर वो बाजार का दिन नहीं रहेगा और आप उस बाजार में जाएंगे तो कैसा माहौल होगा, कुछ का दुकान है, कुछ लोग एक दो लोग खरीदी कर रहे हैं, ऐसा एक सामान्य गांव का बाजार था वो। उसमें जो लोग रहा करते थे, अभी उनके बच्चे दुकान के मालिक हो गए, वो तब अभी तो रिटायर हो गए कुछ लोग, कुछ लोग गुजर भी गए, तो बहुत साल पहले की बात है, बताते थे प्रभुपाद जी लोही बाजार में भिक्षा करने के लिए जाते थे, उनके दुकान से भिक्षा प्राप्त करते थे। और कभी दिन भर किताब लिखने के बाद में रात को शयन होने के बाद जब मंदिर बंद हो जाता था, तो वो रूप गोस्वामी की समाधि और भजन कुटी वो झाड़ू से साफ करते थे, आंखों में आंसू लेकर वो झाड़ू लगाते थे वहां पर। कैसे भाव से रहे वो देखो, उनको एक विश्वव्यापी संप्रदाय समाज वैष्णव समाज स्थापन करना था, उसकी नींव उनके व्यवहार में, उनके चिंतन में, उनके एकाग्रता में, उनकी करुणा में वहां पर छुपी हुई है। और क्यों सब उन्होंने सब ये किया, क्योंकि वो कृष्ण को लोगों को देना चाहते थे, कृष्ण को देना ये सबसे बड़ी भेंट है, बाकी अन्य कोई वस्तु इस दुनिया में भेंट नहीं हो सकती है योग्य, जो जीव के कल्याण के लिए योग्य है वही भेंट के रूप में दे सकते हैं, बाकी सब भेंट को क्या वैल्यू है, सब दिया खत्म हो गया, व्हाट्स द यूज ऑफ दैट। तो वो कृष्ण जो है वो लोगों को देने के लिए उन्होंने जीवन भर चिंतन किया, ऐसे नहीं कि वहां पर संन्यास लेने के बाद में चिंतन किया, जब से वो गृहस्थ बने, जब से क्या 22 साल, जब भी वो गृहस्थ भी नहीं थे, आई थिंक ही वाज नॉट मैरिड, आई थिंक 22 इयर्स व्हेन ही मेट हिज गुरुदेव, तो गृहस्थ होने के पहले से, फिर गृहस्थ बने, फिर बच्चे, फिर उनका लालन पालन, फिर बिजनेस, फिर घर का धक्का धक्की, फिर वो चैलेंजेस सबको संभालते हुए उनका चिंतन कभी भी क्या कहते खंड नहीं पड़ा उसके अंदर। हमारे लिए आदर्श है सब गृहस्थों के लिए, हमारे लिए भी श्री कृष्ण का चिंतन, उनकी सेवा का चिंतन जो है वो चलते रहना चाहिए बैकग्राउंड के अंदर हमेशा, इवन दो वी आर हैविंग फैमिली चिल्ड्रेन ड्यूटीज सब कुछ होने बावजूद भी, जैसे प्रभुपाद जी ने निरंतर चिंतन किया कि कैसे मैं अपनी गुरु जी की आज्ञा को भी पूरी करूं, उसी का अंजाम ये निकला कि वो फिर गृहस्थ आश्रम से निवृत्त होकर श्री वृंदावन में आए। और किस चेतना में रहे वो वृंदावन में, समर्पित एकाग्र और एकांत, पूरी तरह से गहरे विचार मंथन में थे वो, और रूप गोस्वामी का पूरा उनको सहारा था। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब उनका प्रथम स्कंद का 3 खंडों में उन्होंने जब तात्पर्य पूर्ण अनुवाद जब समाप्त किया, तब रूप गोस्वामी ने उनको दर्शन दिए वहां पर। और केवल रूप गोस्वामी नहीं, सभी आचार्य भक्ति सिद्धांत जी, गौरकिशोर जी, भक्ति विनोद जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, सारा संप्रदाय और प्रभुपाद रूप गोस्वामी जी सब दर्शन दिया और उनको आदेश दिया कि अभी आप जाओ और प्रचार करो, और फिर वहां से वो निकले। उनको यकीन नहीं था कि वो कितने साल जिएंगे इस शरीर में, तो उन्होंने कहा कि मैं जो भी कुछ मुझे कहना था वो मैं प्रथम स्कंद के 3 खंडों के तात्पर्य में मैंने लिख दिया है, इसलिए आप देखेंगे उसके तात्पर्य बहुत लंबे 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 होते हैं। जब भागवतम कहीं मंदिर में, नए मंदिर में शुरू होता है, तो एक एक श्लोक का जो प्रवचन है वो कई दिन तक चलता है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ते हैं परबोट का, उस पर प्रवचन देते रहते हैं ह्यूज, बिकॉज प्रभुपाद को ये यकीन नहीं था, मतलब ये गारंटी नहीं थी कि मैं रहूँगा। फिर जब रहे तो उन्होंने और भी लिखा उसको, फिर उनको लगा कि मैं नहीं रहूँगा, तो तभी वो बीच में थे श्रीमद् भागवतम के, और दशम स्कंद ग्यारह स्कंद तो बहुत दूर था, तो उन्होंने अचानक सीधा कृष्णा बुक लिया अपने हाथ में, बोले तो इसको पैरा पूरा करते हैं। वैसे तो फिलोसॉफिकली देखा जाए तो दशम स्कंद का वर्णन पूरे स्कंदों का अभ्यास करने के बाद ही करना चाहिए शास्त्र के अनुसार, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरजेंसी है, इमरजेंसी में तो आपात धर्म में सब कुछ बदली हो सकता है, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के कृष्ण किताब लिखी। हाँ, कृष्ण किताब वो उसमें 99 जो कृष्ण के चरित्र के बारे में जो कथाएं हैं वो उन्होंने गोष्ठी रूप मतलब कथा रूप में लिखा उसको, और उसको प्रसिद्ध किया। जॉर्ज हैरिसन की सुंदर लीला है उसमें, जॉर्ज हैरिसन ने उसको 19,000 pounds डोनेशन दिया उसको छपवाने के लिए, और लाखों उसके किताबें उसमें वितरित हो गए क्योंकि जॉर्ज हैरिसन ने उसको प्रस्तावना दी थी। तो जॉर्ज ने प्रस्तावना दी है ऐसी सोचकर लोगों ने धड़ाधड़ उस किताब को खरीद लिया, और प्रभुपाद जी की जो इच्छा थी वो जो नामुमकिन इच्छा थी, उस समय तो कुछ भी नहीं था, वो नई बुक छापने के लिए इतना सारा कीमत कौन देगा, किताब तो रेडी है लेकिन हु विल बाय इट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो भगवान ने ऐसी योजना बनाई कि जॉर्ज हैरिसन के द्वारा स्पॉन्सर्ड, जॉर्ज हैरिसन के द्वारा प्रस्तावना, ऐसे करके आज भी वो एप्पल का प्रस्तावना उसके अंदर है, और कितनी किताबें बिकी। तो हम लोग इस मैराथन में क्या करते हैं, भगवद गीता और कृष्णा बुक से ही चालू करते हैं, और हमें श्रद्धा के साथ में ये करना चाहिए क्योंकि दिन रात प्रभुपाद जी ने इस किताबों को लिखने में मेहनत किया है, अपना निजी सुख चैन छोड़कर त्याग करके प्रभुपाद जी ने इन किताबों को लिखा है। वो कहा, उन्होंने कहा है कि जो तात्पर्य है ये मेरे दिव्य आनंद की अनुभूतियाँ हैं कृष्ण के साथ में, उसका वो प्रकट्य है, और वो लोगों तक तो हमको पहुँचाना है। एक शुद्ध भक्त के कृष्ण के साथ निजी जो प्राइवेट संबंधों के बीच में जो दिव्य अनुभूतियां हुई है उसका वो हमारे लिए मैनिफेस्टेशन है, और वो लोगों तक पहुंचाना है उसी भाव को ताकि उनका जीवन भी उद्धार हो जाए उसका। तो ये प्रभुपाद जी ने किया है। उसके बाद में जिस वृंदावन में वो रहे, जीवन भर जाते रहे, उसकी चेतना अपने हृदय में समेट कर फिर वो विदेश गए। कई ब्रिजवासियों ने उनको टोका, क्या है कैसे साधु हो आप, सब साधु लोग गृहस्थ हो या विरक्त हो, सब लोग जीवन के अंत में तो वृंदावन में आते हैं और वहां से कहीं नहीं जाने का व्रत ले लेते हैं, वी विल नॉट लीव वृंदावन, तो कभी भी शरीर छूटेगा तो क्या होगा, फिर दिल्ली में फरीदाबाद में कुछ हो गया तो कैसे होगा, कहाँ जाएंगे आप कहाँ पहुंचेंगे। तो सब संत लोग जो है, अधिकतर संत लोग जो होते हैं वो अपने खुद के बारे में सोचते हैं कि मेरा कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी तो बीच ऐसे राइप एज में एकदम बहुत बड़ी अवस्था में वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि फरीदाबाद जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, कुछ वहां दिन कुछ दिन वहां रहेंगे, ऐसा नहीं, सात समुद्र के परे जा रहे हैं वो, जिसमें कोई मायावादी सन्यासी या कोई साउथ इंडियन सन्यासी देश छोड़ के जाता ही नहीं बाहर। एक उड़पी के सन्यासी हैं, गुरु हैं वो, वो कहते हैं कि हम लोग जब सन्यास लेते हैं तो माया इतनी प्रभावी है कि हमारे एक मीटर त्रिज्या में रेडियस के अंदर कोई नहीं प्रवेश करता है। एक भक्तों का चक्र होता है जो हमको हमेशा ऐसे कवर करके लेके जाते हैं, एक मीटर भी हमारे सानिध्य में कोई प्रवेश नहीं करता है ताकि हमारी चेतना जो है दूषित ना हो जाए उनके प्रभाव से। और हम लोग कहीं देश बाहर छोड़ के बाहर नहीं जाते हैं और होली प्लेस में ही रहते हैं और मंदिर में ही रहते हैं, शिष्यों के ही चक्र के अंदर रहते हैं, सुरक्षा चक्र के अंदर, और भगवान की ही विग्रहों की सेवा करते रहते हैं कॉन्स्टेंट, ये हमारा है ताकि हमारी चेतना बनी रहे और हम लोग प्रगति करते रहें, और ये हमारा जीवन है, हम लोग इतना रिस्क समझते हैं ये सब करने के लिए। तो प्रचार भी नहीं हम लोग करते हैं, हमारे जितने शिष्य हैं उनको ही ट्रेनिंग देते रहते हैं बस, बाहर जाके वगैरह कहीं मिलते जुलते नहीं हैं, गृहस्थों के बीच में जाके कहीं बाहर में प्रोग्राम नहीं करते। ये हमारे सभी सन्यासियों का ऐसा ही आचार विचार रहता है, जितने भी आठ मठ के जितने भक्त हैं सन्यासी हैं। आपके प्रभुपाद जी ने कैसे किया हमको समझ में नहीं आता है, एक तो सात समुद्र पार करके चले गए, ऊपर से अदनंगे संस्कृतिहीन सब कुछ रीति रिवाजहीन ऐसे लोगों के बीच में जो चार नियमों का तोड़न तोड़ देते हैं, उसको पाप करते हैं, जघन्य, ऐसे लोगों के बीच में जाकर रहे वो, झोपड़पट्टी में रहे पहले, और वहाँ उन्होंने सबके साथ संपर्क किया, लड़कियाँ, औरत, आदमी, शराबी, व्यभिचारी, ये सबके साथ में रहे वो, उनको प्रचार किया उन्होंने, और उनको उन्होंने कन्वर्ट किया और भक्त बनाया। तो हम लोग ये कभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी को हम बहुत मानते हैं। हमारा सुरक्षा चक्र होते हुए हम लोग इतना रिस्क में रहते हैं। तो प्रभुपाद जी अकेले गए, अकेले, और उन्होंने ना वो बदले उनके प्रभाव से, ऐसा नहीं कि लोगों को डर था कि अरे आपको थोड़ा चेंज होना पड़ेगा उनको प्रचार करने के लिए, लेकिन वो चेंज नहीं हुए, उन्होंने लोगों को चेंज कर दिया। रिपोर्टर ने भी उनको पूछा कि आपका चमत्कार क्या है, भारत के बहुत लोग यहाँ पर आते हैं और कोई हवा से कुछ निकालता है, कोई घड़ी निकालता है, कोई गहना निकालता है, लोगों को देता है, आपका चमत्कार क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये मेरा चमत्कार है, ये जो ग्रह सन्यासी ग्रह और औरतें बैठी हैं, ब्रह्मचारिणी, सब व्यभिचारी, नशा करने वाले, मांसाहारी, सब पापी लोग थे, आज ये भगवान के विग्रहों के ब्राह्मण बनकर सेवा कर रहे हैं, पूरा जीवन परिवर्तन हो गया इनका। तो कौन सा चमत्कार महत्वपूर्ण है? हवा में से विभूति निकालना, सुधा निकालना, कि हृदय परिवर्तन करना? तो रिपोर्टर चुप हो गई, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा जो है वो हृदय परिवर्तन है। और वो कैसे हो सका? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने हृदय से श्री कृष्ण और श्री वृंदावन धाम वो लेकर ही गए थे। तो जहां जहां गए लोगों को उसी को समझा, नहीं क्या ये अनुभूति है, लेकिन वो अनुभूति श्री कृष्ण और वृंदावन धाम की अनुभूति लोगों को दिया उन्होंने। लोगों को पहचानने में टाइम लगा कि एक्चुअली व्हाट वाइब्रेशन इज दिस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्लेजरेबल, वेरी हैप्पी, लेकिन क्या है वो समझ में नहीं आ रहा था। वास्तव में वो श्री कृष्ण और श्री वृंदावन धाम का जो चेतना है वो उन्होंने उनको प्रदान किया, और न केवल प्रदान किया और श्री कृष्ण का भक्त बनाया, न केवल भगवान को वहाँ स्थापित किया, लेकिन वो सब लोगों को लेकर श्री वृंदावन में आए। जो जो उन्होंने वहाँ पर उनको प्रवचन में कभी कभी बताया था, वो सबका प्रत्यक्ष दर्शन कराया, ये है भूमि, ये भूमि में इस जगह ये हुआ था, इस जगह ये जन्म हुआ था, इस जगह पर माखन चुराया था, इस जगह पर ये लीला हुई थी। भक्तों को खुद जाकर, जैसे उनके गुरुजी ने उनको खुद प्रत्यक्ष रीति से श्री वृंदावन धाम की यात्राएं कराई थी, अपने शिष्यों को भी कराया, और वो लोग जो उनकी यात्रा में थे वो आज दुनिया को यात्रा दे रहे हैं श्री वृंदावन धाम की। तो ये हमें समझना जरूरी है कि मनुष्य जीवन में एक शुद्ध भक्त का आचार्य के रूप में होना कितना आवश्यक है। अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो हम लोग जीवन के अंत में पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे, कहाँ दुख भोगने के लिए वापस जाएंगे शरीर धारण करने के लिए। लेकिन श्री गुरु जी जिसके जीवन में हैं वो निश्चित रूप से भगवत धाम पहुँचेंगे। भले हमारी गलतियों की वजह से हम दो जन्म चार जन्म देर करेंगे, लेकिन हमको नहीं करना चाहिए ऐसे, लेकिन जाएंगे ज़रूर अगर हम गुरुदेव ने द्वारा दिए गया फॉर्मूला को अच्छी तरह से अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से हम कितने भी पतित क्यों ना हो एक दिन अपने आप को भगवान के धाम में, भगवान की सेवा में पाएंगे, शुद्ध भक्तों के संग में। तो ऐसे हमारे अद्भुत भगवान जो हैं वो अकल्पनीय दिव्य लीला करते हैं। श्री वृंदावन धाम में ऐसे रहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं कि भगवान है। किसी को लग रहा है मेरे बालक है, किसी को लग रहा है मेरा प्रियतम है, किसी को लग रहा है मेरा दोस्त है, हाँ ऐसे अलग अलग प्रकार के भाव, लेकिन किसी को पता नहीं कि भगवान है। भगवान भी ये भगवान का अपने भक्तों के प्रति जो प्रेम है उसका ये प्रतीक है कि वो अपने सबसे शुद्ध भक्त जो हैं उनको ये बताना नहीं चाहते कि मैं भगवान हूँ। उनको लगता है कि अगर मैं ये बताऊँगा तो मेरे लीला में और संबंध में, प्रेम में जो है वो बाधा आएगी उसके अंदर, जो मुझे अपेक्षित है उनको देने के लिए और उनसे प्राप्त करने के लिए उसमें बाधा आएगी, ये सब जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो है कि मैं कौन हूँ। इसलिए वो श्री वृंदावन धाम में नंगे पैर रहते हैं, सिंपल रहते हैं बहुत, वन भोजन करते हैं, वन मालाएं पहनते हैं, वो मजाक करते हैं, हंसी खेल खेलते हैं, जमुना में डुबकी लगाते हैं, उड़ी लगाते हैं। तो पूर्ण ऐश्वर्य का प्रदर्शन भी करते हैं लेकिन ऐश्वर्य को छुपाए भी रखते हैं। तो बहुत लोग पूछते हैं कि अरे तुम्हारे भगवान इतने 16,108 पत्नियां, ये सब क्या है, सब 16,108, तो एक को संभालना मुश्किल है यहाँ पर। एक को संभालते संभालते नाक में दम आ जाता है। 16,108 नारद मुनि भी देखने गए, अरे देखो क्या चल रहा है, क्योंकि नारद मुनि बहुत चतुर हैं, वो सब गृहस्थियों को जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि सबको मिलते हैं ना, वो इंद्र को मिलते हैं, इसी देवता लोक में जाते हैं, वहाँ जाते हैं, सबको सबको देख रहे हैं, वो सबके घर में क्या चल रहा है उनको पता है। तो जब सुनते हैं कि उन्होंने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया, तो वो खुद भी चले गए, वो देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे चल रही गृहस्थी। तो भगवान तो इतने मजे से हर एक पैलेस में थे, वो हर एक रानी के साथ एक ही साथ में, और किसी के साथ झूला झूल रहे हैं, किसी के साथ बच्चों को खिला रहे हैं, किसी के साथ एकांत में हैं, किसी के साथ सो रहे हैं, किसी के साथ बातें कर रहे हैं, पूरी गृहस्थी के एकदम मशगूल। लेकिन हर पत्नी को और हर बालक, जितने बालक 10-10 पुत्र दिए उन्होंने, हर एक कन्या हर एक पत्नी को दिया उन्होंने, सब संतुष्ट, सब आनंदी, सब समाधानी, सबका अपने पति पर, पति का पत्नी पर अनन्य प्रेम, सब जगह दिखाई दिया उनको। लेकिन यहां पर कहानी समाप्त नहीं होती है भगवान कृष्ण की। भगवान की तो करोड़ों गोपियां थी, है ना, जिनके हाथ में उन्होंने नृत्य किया है। तो यहां पर भी कहानी समाप्त नहीं होती है। एक ऐसी कहानी है जो पुराणों में आती है, वो ये है कि एक सिंधु नरेश थे, उनका नाम था बिमल। सिंधु, सिंधु मतलब वो पाकिस्तान में ना, सिंध देश, वहाँ सिंधु नदी है ना, उधर ही है ना सिंधु नदी, वहीं पर है। तो उसके किनारे में जो देश है वो सिंध देश है, वहाँ पर सिंधु नरेश बिमल जी रहा करते थे। बड़े भक्त थे भगवान के, वो बहुत अच्छे राजा होने पर ऋषि की तरह थे, संतों का संग करते थे। तो उनको संतान ही नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अपने गुरु को बुलाया, हाँ, और पूछा कि क्या हो रहा है, संतान नहीं है, हम तो बूढ़े होते जा रहे हैं, हमारे राज्य को कौन चलाएगा। तो वो संत जो गुरु हैं, संत जो ध्यान लगाते देखते हैं कि इनके कर्म में क्या क्या है, तो देखते हैं, बताते हैं कि आपके नसीब में पुत्र नहीं है। बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन कहा आपके लिए एक और एक न्यूज़ है, शायद आपको दुखी भी कर सकती है और कुछ भी कर सकती है, सब टू यू हाउ टू टेक इट। एक न्यूज़ आपके लिए है, वो कहते हैं कि कन्याएं हैं आपके लिए। अच्छा, तो कितनी कन्याएं हैं? 3 करोड़ कन्याएं, 3 करोड़ कन्या होने वाली आपको। तो वो टेंशन में आ गए हो पहले से ही, अरे एक कन्या होती है ना अपने को, तो जीवन भर उसको प्लानिंग करते रहते कैसे होगा इसका, कैसे होगा। वो सभी जब भी जहीं भी जहाँ भी जाते हैं ना, वो मंदिर में हो या विवाह में हो या कोई प्रोग्राम में हो, ऐसा मेल सेक्शन में स्कैनिंग चलते रहता है, हु इज दैट बॉय हु कैन बी द बेस्ट ग्रूम फॉर माई डॉटर। कहीं भी जाएंगे तो ऐसा एक नज़र रहती है ऐसी, हु इज द वन। तो 3 करोड़ कितना मुश्किल। तो राजा दुखी हो गया बहुत। तो फिर वो गुरु महाराज ने कहा कि आप चिंता मत करो, श्री कृष्ण भगवान परम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम अखिल ब्रह्मांड नायक इनसे विवाह करेंगे। वेरी नाइस, हैप्पी ना, कि चलो भाई संकट आता है लेकिन समाधान भी साथ में आता है। तो फिर उन्होंने कहा कि कैसे कैसे होगा ये सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि वो आएंगे, आप जिस युग में जी रहे हो उसी समय वो भी लीला कर रहे हैं, वो श्री वृंदावन धाम में हैं। पहले कहते हैं कि वो तो वसुदेव के घर में जन्म लिए हैं और वो 4 भुजा वाले हैं, नीले रंग के हैं, मोर पंख धारण करते हैं और पीताम्बर पहनते हैं और सब पूरा वर्णन किया, सब कुछ वर्णन किया, लेकिन एक बात जरूर बताई कि वो 4 भुजा वाले हैं और वो भी वृंदावन में हैं। तो वृंदावन में जाकर आपको उनका कहीं से कहीं संपर्क करना होगा, फिर विवाह होगा। श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की जय हो। तो उन्होंने दूत भेजा श्री वृंदावन धाम में और दूत को पूरा वर्णन दिया जो गुरुजी ने बताया था, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कि ऐसे बालक को आपको ढूंढना है। तो वो गया वृंदावन में, सब जगह ढूंढा, तो फिर जमुना किनारे में उसको कहीं भी वो चतुर्भुज बालक नहीं मिला। तो जमुना किनारे में पहुंचा तो जमुना किनारे में देखा कि अरे बहुत सारे बालक खेल रहे, बहुत सुंदर सुंदर बालक, उसमें एक नीला है, मोरपंख भी है, पीताम्बर भी है, जो उसको बताया सब कुछ है, लेकिन 2 भुजा वाला है, 4 भुजा वाला नहीं। वो देखता है, वापस एक बार चेक करता है सब लिस्ट में, टिक 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 टिक, 4 भुजा क्रॉस, 2 वाला नहीं है, वापस जाता है दुखी होकर। तब भीष्मदेव जो है ना, वो देखो कथा का कथानक जो है ना ऐसा चल रहा है इस तरह से, तब भीष्मदेव सिंधु नरेश के पास आते हैं और वो ये उनको सलाह कर पूछते हैं कि अभी क्या करें, ऐसा ये तकलीफ है। तो कहते हैं कि इसका रहस्य मैं जानता हूँ, सब लोग नहीं जानते हैं, कंस के भय से इसको छुपाए रखा था, ये जो चतुर्भुज बालक था वो दो भुजा वाला बन गया था, और रातों रात वसुदेव ने कृष्ण के आदेश के अनुसार उसको गोकुल में ट्रांसफ़र किया था, और वो गोकुल से अभी नंदगांव में गए हैं और वहाँ से अभी उनका काम चल रहा है। किसी को पता नहीं है कि यही विष्णु है और यही चतुर्भुज बालक था, तो आप जाओ वही है वो। तो तब दूसरी बार दूत आया, और वो भी तभी भगवान सब गोपियों के बीच में थे, तो बहुत देर रुका रहा वो भगवान ने समझा फिर मेरे को कोई मिलने को आया है। भगवान तो अंतर्यामी है, सबके हृदय की बात जानते हैं, कितने भी व्यस्त होते हैं ना फिर भी उनका एंटीना बहुत पावरफुल रहता है सब समझते हैं वो कौन किसके दिल में क्या चल रहा है, क्या चाहता है, और जो सच्चे दिल से उनकी अपेक्षा करता है उसको वह बीच मझधार में भी भूलते नहीं है, कितने भी बीच में व्यस्त को नहीं हो, रासलीला भी करते होंगे तभी अपने वो संकट में गिरे हुए प्रामाणिक भक्त को नहीं भूलते वो। तो कोई अपेक्षा से आया हुआ है तो बहुत युक्तिपूर्वक वो जरा बाजू में आ जाते हैं, उससे मिलते हैं, और दूत अपना मंतव्य उसको बताता है। तो अपना एक रूप जो है वही गोपियों के बीच में छोड़कर दूसरे रूप से हवाई मार्ग से भगवान वृंदावन से उड़ जाते हैं, उसको समझता नहीं क्या हो रहा है, भगवान वही हैं के साथ में, लेकिन एक रूप उनका हवा से उड़कर सिंधु नरेश के पास पहुंचता है। तब सिंधु नरेश जो है ना एक बड़ी बड़ी यज्ञशाला के अंदर हजारों यज्ञ कुंड बनाकर हजारों ऋषियों के बीच में बैठकर यज्ञ करते रहते हैं, इतना सुंदर वातावरण था वहां पर, सब संतों से भरा हुआ था, भक्तों से भरा हुआ था, उसमें हजारों यज्ञ कुंडल के सामने एक एक ऋषि बैठा हुआ था और सब मंत्रोच्चारण हो रहा था, बहुत दिव्य वातावरण था, और उसमें हवा से आप देख रहे हैं ना हवा से श्री कृष्ण भगवान और दूत जो है वो आ जाते हैं वहाँ पर। जैसे ही वो आ जाते हैं राजा तरुण उठ के खड़ा हो जाता है, मैं बीच में बताने को भूल गया आपको कि वो 3 करोड़ कन्या भी जन्म हुआ उनका जन्म हुआ और वो उपवर भी हो गई और उसके बाद में उन्होंने दूत को भेजा था। एनीवेज सो जब वो पहुँचे तो तुरंत राजा एकदम आदर और प्रेम भक्तिभाव से खड़े हो गए, ऐसे जोड़कर हाथ को पत्नी पत्नी पति और पत्नी सब मिलकर, और तुरंत उन्होंने 3 करोड़ कन्याओं को वहाँ बुलाया, हाँ, और उसी यज्ञ कुंड के सानिध्य में उन्होंने उनका विवाह कराया भगवान का। कितने समृद्ध राजा हुआ करते देखो आप, हमारे एक कन्या के विवाह करने के लिए साल भर हम लोग ने मेहनत किया है पूरा व्यवस्था करने के लिए, अभी वो चिंटू मैरिज किधर तो भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल मैरिज, हाँ, और कितना मेहनत करना पड़ा। ये राजा तो ऐसे ही बैठे थे अपना यज्ञ नित्य कर्म में यज्ञ कर रहे थे, उसमें विवाह भी हो गया उनका पूरे ऐश्वर्य के साथ, सब कुछ विदाई विदाई सब हो गई उसी में, मतलब कितने ऐश्वर्य संपन्न हुआ करते थे वो, कितना रिसोर्स था उनके पास पुराने जमाने में, भक्ति तो थी। तो भगवान ने वो 3 करोड़ कन्याओं को लेकर फिर आकाश मार्ग से वो काम्य बन गए विवाह होने के पश्चात। अभी एक कृष्ण जो है वृंदावन में लीला कर रहे हैं, दूसरे कृष्ण जो हैं वो काम्य वन में उतरते हैं। अभी वो कृष्ण जो है बालक है, वो कृष्ण पूर्ण किशोर अवस्था में जो विवाह कर चुका है, और काम्य वन वो वन है जो 12 वनों में से नंबर 1 का प्रिय वन वृंदावन है, नंबर 2 का वन जो है वो काम्य वन है, बहुत भगवान को प्रिय है, उसको प्रति वृंदावन कहा गया है। वृंदावन काम्य वन जाने से सब काम पूरे हो जाते हैं, मतलब जो भी इच्छा है हृदय की सब पूरे हो जाते हैं, ऐसे श्लोक हैं आदिवरा पुराण में। तो वो वहाँ जाते हैं और उनका रहने लगते हैं काम्य वन में, और काम्य वन में फिर वो उन 3 करोड़ अपनी नए पत्नियों के साथ में रास रचाते हैं, और उस रास में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि सभी गोपियों के अश्रु से आँखों से अश्रु आते हैं प्रेम से, सभी गोपियों के कृष्ण के भी आते हैं, और वो सभी गोपियों के आँखों से जो प्रेम अश्रु प्रेम पूर्वक अश्रु बहते हैं आनंद के, उनसे एक बड़ा कुंड बनता है विशाल, उसका नाम है विमल कुंड, और वो विमल कुंड में भगवान 84,000 तीर्थों को आवाहन करते हैं आप भी आके रहो इसके अंदर, और वो तीर्थराज विमल कुंड बन जाता है, और वो काम्य वन का एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और विमल कुंड का महात्म्य ऐसा है कि विमल कुंड में जो भी स्नान करेगा वो दोबारा इस दुनिया में जन्म लेगा नहीं, और जन्म के अंत में गोलोक धाम में प्रवेश करेगा। श्री विमल कुंड धाम की, बहुत सुंदर और बहुत विशाल कुंड है वो। तो सोचा मैंने आज आपको कामवे वन की सैर कराएं, ठीक है ना? हरे कृष्ण। बहुत लंबी प्रस्तावना होगी उसके लिए, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो कामवे वन जो है बहुत अद्भुत वन है, भगवान का बहुत प्रिय वन है, और लोग जो है ना वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, क्योंकि वो वृंदावन जो जैसे शहर लाइक अरेंजमेंट है ना वहाँ पर, वो बहुत दूर है वहाँ से। और कामवे वन जो है वो वहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। नंदगांव, नंदगांव बरसाना 45 किलोमीटर है, और उसके आगे भी 25 किलोमीटर राजस्थान के अंदर कामवे वन है। उसके आगे 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 जाएंगे तो फिर वो बहुत दूर आदि बद्री केदार, वो सब बहुत दिव्य स्थान है वहाँ पर। लेकिन आज भी आपको श्री वृंदावन धाम का जो ब्रज का वातावरण है वो कामवे वन में आपको मिलेगा। ये क्यों बता रहे हैं आपको? क्योंकि वृंदावन में, वृंदावन तो भगवान का बहुत बहुत ही प्रिय वन है सबसे, और उसकी अनंत लीला है वृंदावन में, अनंत क्षेत्र है उसके अंदर। यहाँ तक कि बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, यमुना सब वृंदावन में आता है। एवरीथिंग कम्स इन वृंदावन। अभी मार्ग यमुना का बदल गया पहले से, लेकिन उस समय गोवर्धन के तलेटी से यमुना जी बहती थी। नंदगांव बरसाना भी उसमें इंक्लूड है। तो भगवान जब गोकुल से वृंदावन गए, हम लोग पढ़ते हैं ना भागवत में, तो हम लोग वृंदावन कैसे गए, तो नंदगांव में रहते थे। लेकिन नंदगांव वृंदावन, या आज का भौगोलिक वृंदावन, आज का नंदगांव, आज का बरसाना, गिरिराज, बीच में ये सब मिलके 20 कोस का एरिया है। तो 84 कोस में से 20 कोस तो यही एरिया है, उसको वृंदावन कहते हैं। और उसके तुरंत बाद कामवे वन आता है, इमीजिएटली आफ्टर दैट। तो ये कामवे वन में बहुत अद्भुत लीला है भगवान की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आज की तारीख में आपको वृंदावन में वो जो गाड़ियाँ हॉर्न टें 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 आश्रम, ये सब जो कमर्शियल भेलपुरी और ये चिकन चाव चाव क्या क्या चाउमैन, इतना माहौल बिगाड़ दे लोगों ने दिया है उसको। हाँ, क्या नहीं मिलता है, दुनिया का सब कुछ मिलता है उधर, एवरी नॉनसेंस इज अवेलेबल देयर, इतना करप्ट हो गया है वो। और फिर भी वृंदावन वृंदावन ही है, वो बदलता नहीं है, जो बाह्य दृष्टि से वो कवर है सबसे, लेकिन आम आदमी जो वहाँ पहुँचता है वो तो बहुत बिविल्डर हो जाता है वहाँ पर। इतनी भीड़, इतना आवाज़, इतना शोर, इतने लाउडस्पीकर बज रहे हैं सबको, फिल्म के गाने को ट्विन पर कोई भजन, विकृत भजन चल रहा है कोई, हाँ, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स यू नो विच कैन बी बिल्डर वन आर देयर। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वृंदावन अगर कोई नए व्यक्ति को जाना है, अकेले कभी नहीं जाना है उधर। जो भक्त हैं वो जानते हैं, उनके साथ ही जाना है। तो मेरे भाई भी अकेले गए थे वृंदावन में एक बार बहुत पहले, उनको पंडाओं ने ऐसे कॉर्नर करके सारा जेब खाली कर दिया उनका। और जेब खाली कर तो ठीक है, वी आई अंडरस्टैंड, ठीक है, फाइन, लेकिन जो उनकी मति भ्रष्ट कर दी वृंदावन के बारे में, वो परमानेंट कर दी। जो इधर परिणाम हुआ ना उनके, क्या वृंदावन है, क्या है सब, व्हाट इज नॉनसेंस, ये जो भावना लेकर गए ना, वो सबसे बड़ा नुकसान है उसका। वो तो क्या है, जेब में पैसे कभी इधर जाते खर्च होते, कुछ भी होते, उसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो नुकसान चेतना का हुआ, दैट इज परमानेंट, और वो किसी का होना नहीं चाहिए श्री वृंदावन के बारे में। लेकिन सबसे, मतलब सबसे प्रेरणादायी चीज़ दुनिया की जो है, वृंदावन धाम है, भगवान का सबसे प्रिय दिव्य धाम है वो। उसके बारे में नेगेटिव फीलिंग किसी के मन में पैदा होना, उसके लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है वो, सब ग्रेटेस्ट मिसफॉर्चून। कि बाय द वे, बाय चांस ही लॉस्ट और ही रिसीव्ड सम नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट वृंदावन। इसलिए अगर वृंदावन में आजकल जो आपको माहौल नहीं प्राप्त हो रहा है, वो कामवे वन में प्राप्त है बड़ी सहजता से। जो ब्रज का वातावरण का मतलब क्या है, जहाँ पर गायें जो हैं बड़े प्रेम से निर्भय व्यवहार करती है, सब ब्रजवासी जो है बड़े प्रेम से स्वागत कर लोगों का करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, कोई चीटिंग नहीं करता है, कोई वहाँ पर करप्टेड नहीं है, कोई पंडागिरी नहीं करता है। हाँ, स्थान भी लुप्त तो हो रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से है, उपलब्ध हैं, शांति है बहुत, लोग राजस्थान के भी अच्छे हैं, साफ सफाई रखते हैं। उसमें हजारों कुंड हैं कामवे वन में, हजारों कुंड है, लिटरली हजारों कुंड। वो आदिवरा कुंड में कामवे वन का एक अध्याय, उसके अंदर सब विस्तार में उसका वर्णन दिया, वो भी संक्षेप में है, विस्तार में भी नहीं है। वो परशुराम जी ने वहां पर जब क्षत्रियों का संहार किया, तो कई कार्य किए उसको शुद्ध होने के लिए। एक तो परशुराम क्षेत्र बनाया साउथ इंडिया में उधर, और हमारे गाँव गोवा से लेकर कर्नाटक उड़पी और केरला और कन्याकुमारी तक एक बड़ा पट्टा तैयार किया, वो ब्राह्मणों को दान कर दिया, और यहाँ पर आके 9 कुंड बनाए उन्होंने, परशुराम कुंड, 9 कुंड बनाए लोगों के उद्धार के लिए, वो भी एक अपने क्षत्रियों के संहार के अगेंस्ट उन्होंने बनाए। पांडव भी वहाँ पर वनवास में थे, पांडव जो वनवास में थे उसमें कुछ समय वो काम्य वन में थे, और जो बहुत ही रोचक और मशहूर जो प्रसंग है यक्ष का और युधिष्ठिर का संवाद, वो उस जगह पर हुआ है जहाँ पर पांडव जी रहते थे। पांडव, उसका नाम है धर्मकुंड। उसमें कुंती देवी ने नकुल को पहले भेजा था, फिर सहदेव को भेजा था, फिर भीमसेन को, फिर अर्जुन को, फिर भीमसेन को पानी लाने के लिए। और वो आवाज़ आई, हमारे सवाल का जवाब दो नहीं तो मृत हो जाओगे। तो सब लोगों ने सवाल का जवाब नहीं दिया, हु केयर्स, और जल लिया तो उसर ही मृत हो गए वो। बहुत देर तक सब भाई गए, लौट के नहीं आए। फिर कुंती देवी ने कहा, युधिष्ठिर कुछ गड़बड़ लगता है मुझे, आप जाइए और देखो क्या हो रहा है। तो जाके युधिष्ठिर महाराज ना इतने संतुलित भाव के थे, वो इतने शांत चित्त थे वो। अभी जब भीमसेन गए तो भीमसेन ने देखा ना कि अर्जुन जैसा महायोद्धा भी मृत होकर पड़ा हुआ है। अर्जुन जैसा महायोद्धा, शरीर में कोई घाव नहीं है कि भाई कोई बाण लगा, कोई तीर लगा, कोई शक्ति लगी, कुछ कोई चिन्ह भी नहीं है, पूरा शरीर वैसे के वैसा ही है लेकिन मृत है, अर्जुन जैसा महायोद्धा। जब अर्जुन गए तो उन्होंने देखा ना कि हमारे वीर महायोद्धा जग प्रसिद्ध नकुल सहदेव बेहोश पड़े। तो भी उनको लगा नहीं कि कुछ भयंकर यहाँ पर चीज है। उन्होंने भी अपने साथ गर्व से पानी पीने का कोशिश किया। युधिष्ठिर गए तो सबसे पहले देखा कि मेरे चार महारथी विश्व विजेते भाई जो हैं वो मृत पड़े हुए हैं बिना किसी व्रण के। तो वो नम्र ही थे और नम्र हो गए, आवाज सुना तुरंत जवाब देना आरंभ किया नम्रता से, ये समझकर जानते हुए कि मेरे चार भाइयों को जो बिना व्रण किए हुए मार सकता है वो तो बहुत बलशाली होगा, मुझे नम्र ही होना चाहिए। फिर सब प्रश्नों का उत्तर दिया। फिर आखिरी प्रश्न का उन्होंने प्रश्न किया कि इस जग में सबसे आश्चर्य की बात क्या है। तो उन्होंने कहा कि सब लोग मर रहे हैं लेकिन जो जीवित है वो सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ तक कि कथाकार भी सोचते यही है कि हम नहीं मरेंगे, हम कथा करते रहेंगे। है ना, मतलब कथा में कितनी ये प्रभावशाली बात है ना, लोग तालियां बजा सकते हैं इसके अंदर, वो वाह वाह कह सकते हैं, वाह क्या बात है ऐसे बोल सकते हैं। और कथाकार सोचता है कितनी सुंदर बात कही मैंने, और मैं ये बात कहते रहूंगा, बार बार कहते रहूंगा और जीवित भी रहूंगा उसके लिए। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है सब लोग। तो उस उत्तर से वो यक्ष जो है प्रसन्न हो जाते हैं, और यक्ष और कोई नहीं थे, यमराज स्वयं थे। वो अपने पुत्र के इस उत्तर से नम्रता से बड़े प्रसन्न हो गए वो, उन्होंने सभी भाइयों को जीवित कर दिया। तो वो कुंड जो है वो वहाँ पर है, वहाँ पर कृष्ण भगवान, वहाँ पर द्रौपदी ने वो जो प्रसंग हुआ था उनके जीवन में, वो दुर्वासा जी आए थे वो भी उधर ही हुआ है लीला, जमुना जी वहाँ पर भाग करती थी उस समय। तो वो प्रसंग दुर्वासा जी का जो सूर्य थाली का अक्षय पात्र का, वो भी वहीं पर हुआ है। कृष्ण भगवान स्वयं आए वहाँ पर, मतलब ऐसा नहीं कि कृष्ण भगवान वृंदावन को छोड़ने के बाद वहाँ पर आए नहीं, गुप्त रूप से आए हैं पांडवों को मिलने के लिए। तब किसी नंद महाराज को किसी को पता नहीं था, वो आए हैं द्वारका से आए थे वहाँ पर। हाँ, फिर श्री कृष्ण भगवान जब बालक रूप में थे तो वही काम्यवन जो है उनका साक्ष्य लीला और माधुरी लीला दोनों का एक मिलन है काम्यवन में। गौचारण की भूमि भी है, बहुत खेल खेलते थे वहाँ पर। एक लुकलुकी कुंड है वहाँ पर एक, हाँ लुकलुकी कुंड, अरे इतने सुंदर सुंदर कुंड है, इतने सुंदर स्थान है। एक बार वो लुकलुकी कुंड की जगह पर ड्राई हो गया था और वो बिल्डिंग बनाने का प्लान हो गया था। तो मैंने कहा, अरे अभी तो हमने लुकलुक कुंड का दर्शन किया था बहुत पहले, अभी आगे जाएंगे तो बोलेंगे ये जो बिल्डिंग है ना बहुत सुंदर, यहाँ पर लुकलुक कुंड हुआ करता था, ऐसे बोलना पड़ेगा। तो बहुत दुख हुआ मुझे इस बात का, लेकिन भगवान की दया से तुरंत कोई व्यक्ति सामने आए और उन्होंने उसको रोका और वो लुकलुक कुंड को वापस निर्माण किया। क्या लीला थी वहाँ पर, भगवान और उनके भक्त जो हैं सखा, वहाँ पर लुका छुपी खेलते थे, ब्लाइंड फोल्ड। हाँ, कभी हाथ से बंद करते थे तो लोग आँखों को पट्टी बांधते थे और गोल गोल घुमाते थे और सब लोगों को फिर हाथ लगाते थे ऐसे जाके, और बहुत सुंदर लीला है वहाँ पर। फिर भी चरण पहाड़ी है वहाँ पर, दिन भर ग्वाल गौचारण ग्वाल बालों से खेलते थे। हाँ, और जब संध्या होने को आती थी ना व्याकुल होना आरंभ होता था उनका, क्योंकि संध्या होने के बाद में गोपियों को मिलने का समय है, गोपियाँ भी व्याकुल ये भी व्याकुल। हाँ, ये व्याकुलता जो है ना वो कंटेजियस है। वहाँ पर वो व्याकुल होने लगे, इधर ये भी व्याकुल होने लगते थे। ये महाराज ने भी बताया है कि जब प्रेम होता है तो अपने प्रेमियों के भाव को हम कहीं भी रहेंगे वो भाव हमारे यहाँ पहुँचता है। नहीं मुझे याद करना, मैं कहाँ रुका अभी? लुकलुक के घंटे नहीं, अपनी अभी मैं चरण पहाड़ी के ऊपर आ रहा हूँ, मुझे याद करना। मैं आपको एक थोड़ा सा बता रहा हूँ कि हमारे पुना यात्रा में एक बार राधानाथ महाराज जी उस समय पुना यात्रा करते थे। पुना यात्रा बेचारा इतिहास हो गया हमारा। पुना यात्रा मतलब एक हमारे हरे कृष्णा के इतिहास में एक सनसनीखेज प्रसंग है, अध्याय है वो पुना यात्रा, जो जहाँ पर विश्व की सारी नदियाँ बहा करती थी। अभी भी बहती हैं लेकिन उस समय अधिक प्रकट रूप से बहती थी। इसे महाराज कहते हैं ऑल द वर्ल्ड्स होली रिवर्स आर फ्लोइंग हियर नाउ, डिवोटीज आर कमिंग टुगेदर एंड चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक पुना यात्रा के अंदर ऐसे खबर आ गई कि किशोरी माता जी के पिताजी गुजर गए। तो हमको बताया गया कि आप उनको ले जाना है घर पे, उनके उनको बताना नहीं है, चुपचाप ले जाना है। तो राधानाथ महाराज जी ने उनको पहले ही शाम को बताया था कि टेक केयर ऑफ योर फादर, प्लीज टेक केयर ऑफ योर फादर। और नेक्स्ट डे ये न्यूज़ आया तो उनको हमने बताया नहीं। तभी वो छोटी सी वो मेडिकल स्टूडेंट थी, तो हम लोग मैं और मेरी पत्नी उनको कार से लेके ऐसे बहलाते बहलाते अलग अलग बातें करते 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 उनको बॉम्बे ले गए। फिर उनके पिताजी का वहाँ पर दर्शन हुआ वगैरह वगैरह, फिर वो सब अंत्य संस्कार वगैरह हुआ। तो किशोरी माता जी ने महाराज से पूछा कि महाराज आपको कैसे पता, आपने कैसे मुझे बताया? तो महाराज ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जब दो व्यक्तियों के बीच में सच्चा प्रेम होता है तो ये सब हृदय में पता चलता है। इसलिए आप लोग भी दूसरे लोगों पर हृदय से प्रेम करो, फिर उनकी सारी अवस्था जो है आपको हृदय में परमात्मा द्वारा पता चलेगी। बिकॉज आई लव योर फादर, परमात्मा रिवील टू मी इन द हार्ट कि इज इन अ डेंजरस सिचुएशन, ऐसा है वो। और जब द्वारकाधीश प्रभु के पिताजी गुजर रहे थे हमारे हॉस्पिटल में, तो वो एक दिन ऐसे बहुत ही भयंकर अवस्था में आ गए। तो मैंने द्वारकाधीश प्रभु को बताया, प्रभु जी मेरे ख्याल से अभी तुरंत महाराज से बात करनी चाहिए फ़ोन से, क्योंकि वो कभी भी जा सकते हैं। तो महाराज अमेरिका में थे तो हमने तुरंत ISD फ़ोन का इंतज़ाम किया और उनसे बात करवाई महाराज से। और उन्होंने एक शिष्य कैसे बात करता है गुरु से, वैसे उन्होंने पूरा संवाद किया। महाराज मतलब बहुत बुरी अवस्था में, एकदम जर्जर अवस्था में मर रहे हैं ऐसे अवस्था में। आई एम योर डिसाइपल, वॉट टू डू, वट इज़ माई ड्यूटी नाउ, प्लीज टेल मी, आई सरेंडर माई लाइफ टू यू, आई एम योर्स महाराज, ऐसे करके उन्होंने बहुत लंबा संवाद किया फ़ोन पे। मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग है पूरा। तो वो संवाद हो गया, मुझे लगा कि अभी हमारा अनुभव ऐसा है कि जब भी ऐसी बातें होती है ना फाइनल, तो उसके बाद कुछ घंटों में वो व्यक्ति चले जाते हैं, ऐसे हमारे कई बार अनुभव है। तो ये मंगलवार का दिन था, तो रात को ये बात हुई, तो हम लोग जाके फिर घर सो गए। अब बुधवार को वो प्रभात जागृति में आए, तो प्रभात जागृति में ये पूरे चकाचक एकदम फ्रेश गिरिराज द्वारकाधीश प्रभु के पिताजी प्रभात जागृति में प्रवचन में बैठे हुए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे ये तो अच्छी बात कर रहे हैं। वो ऐसा ही वॉज ड्राउजी कोमेटोज सब कंडीशन में थे वो, इन पूरे अपने चलकर हुए और ट्यूब भी लगा हुआ है इधर, सीपी लाइन लगा हुआ है, सब पूरे एकदम अवस्था में कथा सुन रहे हैं। और मुझे बोले हरे बोल में शुरू हो, सब गले मिल रहे हैं, सब बड़ा आश्चर्य लगा बहुत। लेकिन आठ ही दिन के बाद में फिर वो ऐसे ही वापस अवस्था में गए। और वो लास्ट दिन में उन्होंने कुछ बात नहीं किया किसी से, ही वॉज फुल्ली कॉन्शियस, बट ही वॉज लाइक लुक्स लाइक डीप कंटेम्पलेटिव सिचुएशन, मतलब बहुत गहरे चिंतन वाले लग रहा था कि वो है, होश में पूरे हैं लेकिन कुछ सोच रहे हैं ऐसा। और उस दिन महाराज जी पैकिंग कर रहे हैं अपनी बैग में, बैग का शिकागो से बॉम्बे आने के लिए, उनको अगले दिन फ्लाइट पकड़ के इंग्लैंड आएंगे पहले वो, बाद में फिर वो हमेशा वो इंग्लैंड आते हैं, बाद में वहाँ रहते हैं कुछ दिन और फिर प्रोग्राम करके फिर बाद में आठ एक दिन के बाद में इंडिया आते हैं। तो वो शिकागो से निकलने के लिए वहाँ पर बैग पैकिंग कर रहे हैं। और उस दिन के बाद पूरा दिन उन्होंने ऐसे मूड में रहे वो, और महाराज वहाँ पैकिंग कर रहे हैं और ये एकदम गहरे विचार मंथन लायक मूड में हैं। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6:30 बजे उनका देहांत हो जाता है, द्वारकाधीश प्रभु का पिताजी का देहांत हो जाता है। तो हम लोग ने महाराज को फिर इन्फॉर्म किया, फिर महाराज ठीक है। और फिर जब घूमते घूमते फिर इंडिया में आ गए, तो महाराज को हमने पूरा वर्णन किया इस प्रसंग का। महाराज जी आपसे हमने फोन पे बात किया, नेक्स्ट डे वो फ्रेश हो गए थे, जागृति प्रोग्राम में गए थे, और उसके बाद में 8 दिन के बाद ऐसे हो गया पूरा। हम लोग बोलते महाराज को पूरा ऐसा ऐसा हुआ, और इस तरह से इस दिन को वो पूरी तरह से अपने अंदर ही मग्न थे विचार मंथन में। तो उन्होंने कहा महाराज ने कि वो पूरा दिन मुझसे बात कर रहे थे, मुझे उन्होंने कई प्रश्न पूछे, और जब मैं बैग भर रहा था तो सारे उनके प्रश्नों का मैंने उत्तर दिया। फिर वो संतुष्ट हो गए और उसके बाद उनका देहांत हो गया। तो हम लोग तुम दंग रह गए, माय गॉड, क्योंकि उनका बहुत प्रेम था। तो ये सब जो बातें हैं ना, ये सत्य है। ये मत समझना कि ये कपोल कल्पित बातें हैं लोगों को बहलाने के लिए। जिनको श्रद्धा है उनके लिए सत्य है। गुरुजी और शिष्य उनका जो संबंध है वो बहुत गहरा, बहुत दिव्य और चिरंतन संबंध होता है। आपको लगता होगा कि क्या प्रभु जी, दीक्षा तो लिया है, कभी दर्शन नहीं होता है, कभी नासिक नहीं आते हैं, कभी तो बात करना तो छोड़ ही दो, दूर भी दूर से देखे तो बहुत है, कभी टीवी पे देख लेते हैं उनको, इंटरनेट पे, ये कैसा दीक्षा का संबंध है हमारा, समझ में नहीं आता इसको क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑल दिस थिंग्स। ये हमारे बाह्य विचार शैली है, कंप्लीटली बाह्य विचार शैली। दिव्य स्तर पर आप सोचेंगे तो आप सबको पता होना चाहिए कि गुरु शिष्य का संबंध बहुत गहरा, बहुत निजी, बहुत प्राइवेट और बहुत अंतरंग होता है। और जितनी आप शरणागत भाव में हैं, कहीं भी हो, अलग लोक में भी आप जाएंगे, जितना आपका भाव कृष्ण कॉन्शियस है, शरणागत है और उनके द्वारा उनके लिए समर्पित है सेवा में, उतने आप गुरु जी के हृदय के स्तर पर निकट रहेंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी को अमेरिका में कभी भी गुरु जी का संग नहीं है ऐसी अनुभूति नहीं हुई। इसे माय गुरु वॉज ऑलवेज विथ मी, आई नेवर वॉज अलोन। उनको पूछते थे ना कि आप तो अकेले थे, कैसा आपने सब संभाला, उन्होंने कहा कि मैं कभी भी अकेला नहीं था। तो आपको अगर आपके गुरु के संग निकट संग करना है तो आपको उनकी सेवा करनी है, जो उनको उन्होंने आपको दी है या आपके वरिष्ठ भक्तों ने आपको दी है, हृदय से आपको करनी है। उस सेवा के माध्यम से ही आपको श्री गुरु का एकदम निकट संपर्क प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये प्रवचन में कहने वाली बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। इसको मोर देन प्रवचन, इट इज माय मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। तो अभी मैं क्या बोल रहा था, हाँ, चरण पहाड़ी में वो वहां पर व्याकुल हो रहे हैं तो ये भी व्याकुल हो रहे हैं, है ना कनेक्शन उसका। हाँ, जैसे गुरु शिष्य का कनेक्शन है वैसे भगवान और उनके गोपियों का भी है। तो भगवान जाते हैं एक पहाड़ पर और वहां पर मुरली बजाने लगते हैं। मुरली बजाते हैं तो वो मुरली का स्वर जो है वो इतना इतना दिव्य स्वर था, वो सारे पृथ्वी लोक को पार करके स्वर्ग लोकों में गया, और सभी गंधर्व, किन्व, किन्नर, यक्ष, किम पुरुष, जितने भी लोक में जितने भी कलाकार लोग रहते हैं ना, वो सब लोग अपनी कला का प्रदर्शन करने लगे। तुरंत गंधर्व नाचने लगे, गंधर्व गाते हैं ना, गंधर्व गाने लगे और यक्ष किन्नर नृत्य करने लगे, कोई वाद्य बजाने लगे, एकदम तुरंत दिव्य भावना में आ गए सब लोग और झूलने लगे ऐसे भाव विभोर होकर। फिर वो ब्रह्मा लोक तक गए, ब्रह्मा भी अपने कमल में बैठकर झूलने लगे, और फिर ब्रह्मा लोक ब्रह्मांड का आवरण पार करके वो ध्वनि उसके बाहर गया और वो सभी लोकों में गया जितने भी ब्रह्मांड है। फिर वो महाविष्णु, वो गर्भोदक शाही विष्णु के पास गया और श्वेतद्वीप में शिरोदक शाही विष्णु के पास पहुंचा, और वो नाग में लेटे हुए गर्भोदक शाही विष्णु भी ऐसे झूल रहे थे, शिरोदक शाही विष्णु भी झूल रहे हैं। वो ब्रह्मांड के बाहर जाकर अनंत ब्रह्मांड में पहुंचा और वहां जाके फिर कारण सागर में लेटे हुए योग निद्रा में महाविष्णु तक पहुंचा, और वो निद्रा से जग गए वो, और वहां पर वो झूलने लगे इस ध्वनि सुनकर। फिर वो विरजा को पार करके वैकुंठ ब्रह्म ज्योति में पहुंचा, सभी विष्णु जितने वैकुंठ में थे वो झूलने लगे उस बांसुरी की आवाज सुनकर, और फिर वो आवाज गौलोक में पहुंच गई। इतनी दिव्य मुरली भगवान ने बजाई, बहुत सुंदर वर्णन दिया उसका कि मुरली का प्रभाव क्या था भगवान का, लेकिन साथ साथ में उसका लोकल इफेक्ट क्या था। ये तो पूरा, वो तो पूरा वहां तक पहुंच गया, लेकिन लोकल में क्या हो रहा है, लोकल लोग सोचते हैं हमारे लिए क्या है इसके अंदर। तो गोपियों को मैसेज मिल रहा है, डोंट वरी, मैं आ रहा हूं, थोड़े समय की देरी है, बस मैं आ रहा हूं। और ग्वाल बाल जो व्याकुल हो गए थे, कहां गए कृष्ण, कहां गए कृष्ण, उनको बोला मैं भी हूं, अब चिंता मत करो, मैं इधर ही हूं। लेकिन जिस तरह से मुरली बजी उस तरह से वो सुनकर, वो पत्थर जो भी सजीव है वहां के, हाँ, चेतनामय है, वो भी पिघलने गए, और पिघलने से भगवान के चरण चिन्ह जो है भगवान ऐसे अंदर अंदर जाने लगे उसके, जैसे हम कीचड़ में पार होते ना तो पैसे अंदर घुसता है पैर, वैसे भगवान के पैर जो है वो ऐसे पत्थर के अंदर जाने लगे, एक पैर आधा, एक पैर पूरा, कौन सा पूरा और कौन सा आधा, देखिए मदन गोपाल जी को। हाँ ये चिंतन जरूरी है बहुत, झट से आपको शायद आंसर नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए विच फुट फुल एंड विच फुट हाफ। हमेशा राइट पैर कृष्ण का जो है वो आधा रहता है और बायां पैर जो है वो पूरा रहता है। तो बाएं पैर का पूरा चिन्ह, दाएं पैर का आधा चिन्ह, और उनकी लकुटी जो वहां पर उन्होंने आग पर चिपका के रखी थी, वो लकुटी का एक होल, और उसमें से वो सुनकर गाय भाग भाग के आती है, तो उसके भी दो चरण चिन्ह है उधर। ऐसा पूरा दृश्य बनता है, जब बांसुरी बजाना बंद हो जाता है तो पत्थर पूरा पत्थर हो जाता है, और अभी भी वो चरण चिन्ह वहां पर बने हुए हैं। और गर्ग संहिता में गर्ग मुनि सॉरी नारद मुनि बताते हैं बहुलाश्व को कि जहां जहां भी श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह और पाद चिन्ह और शरीर चिन्हों का दर्शन होता है, उस व्यक्ति को दोबारा इस दुनिया में जन्म लेना नहीं पड़ता है, वो गौलोक में प्रवेश करता है। केवल देखने से, और ऐसे अनंत हस्त चिन्ह और पाद चिन्ह कामय वन में आपको मिलेंगे। तो ये चरण पाड़ी में तुमने बहुत सुंदर मुरली बजाई है। फिर वो एक उधर एक वन है भोजन थाली उसको कहते हैं, वहाँ पर एक इंद्रसेन नाम की शिला है जो एक राजकुमारी शिला बनी थी, उनको भगवान को भोजन कराने की इच्छा थी, तो भगवान ने उनको वरदान दिया था कि आप शिला बनोगे और आपके अंदर बनी हुई थालियों में मैं बचपन में खाया करूँगा। बहुत इतिहास की बात है। वो पर्वत बनी वहाँ पर, और यशोदा माई उस पर्वत में शिला में बने हुए थाली कटोरी में श्री कृष्ण बलराम को भोजन कराया करती थी वो। तो वहाँ पर जब व्योमासुर आया और इनके खेल में उसने व्यवधान किया, ये चोर पुलिस का खेल खेल रहे थे, कुछ पार्टी चोर बने थे, कुछ पार्टी चोर बने थे, कुछ पार्टी पुलिस बने थे, और बाकी जो बचड़े थे वो चोरी करने के लिए, ऐसे उनका सीन था। तो कुछ चोर ग्वाल बाल थे, वो चोरी कर रहे थे और पुलिस ग्वाल बाल उनको पकड़ रहे थे, ऐसा लीला बहुत सुंदर खेल रहे थे। तो अचानक ना पुलिस पार्टी के अंदर सॉरी चोर पार्टी के अंदर वो व्योमासुर जो है वो वत्स बनकर घुस गया, और एक्चुअली सारे बछड़े कम 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 होने लगे, उसके बाद में ग्वाल बाल भी कम कम होने लगे, और कुछ देर बाद में ग्वाल बाल और गछड़े सब गायब हो गए। तब भगवान को समझा कि गड़बड़ है, तो उन्होंने जाकर उन्होंने क्या किया था, व्योमासुर ने सारे बालकों को वो पास के पहाड़ के गुफा में बंद कर दिया था। तो फिर भगवान ने उसको युद्ध में ललकारा, और वो इतना पहाड़ जैसा विशाल शरीर था उसका, हाँ एकदम आकाश को व्याप्त कर दिया उसने। भगवान भी बड़े हो गए, भगवान का उनका बहुत भयंकर युद्ध शुरू हो गया, कुछ आकाश में कुछ जमीन पर, कुछ आकाश में कुछ जमीन पर, सब भयंकर युद्ध हो रहा है। वो भी छलांग लगा रहा है, वो भी छलांग लगा रहा है, फिर ये लोग मल्ल कैसे करते हैं, मल्ल ऐसे गोल 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 घूमते हैं और ऐसे जंप करते हैं एक दूसरे के ऊपर, फिर धक्का लगाते हैं, फिर सर से मारते हैं, फिर मुक्के से मारते हैं, फिर खंधे से मारते हैं, फिर घुटने से मारते हैं, फिर शरीर से मारते हैं, खंधे से मारते हैं, ऐसे बहुत सारा मल्ल युद्ध होती। तो बहुत भयंकर उनका युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि पृथ्वी जो है वो कांपने लगी भय से, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। समटाइम्स यू नो यू आर अ सिंपल मैन, अगर आप जाते रास्ते पर अचानक गोलाबारी और कुछ होता है तो आप ऐसे ऐसे कांपने लगते हैं ना। वो जब पीटी में हमारे बम ब्लास्ट हुआ था, गोलीबारी हुई थी, तो लोगों की कैसी अवस्था थी, बाप रे सब कुछ सामान वामान छोड़ के भाग गए थे वो। तो पृथ्वी ऐसे भयभीत हो गई, तो बलराम जैसे आराम से खड़े थे, उन्होंने अपना एक पैर अंगूठे से दबाया और अपना उत्तरीय वस्त्र जो है वो जमीन पे डाल दिया और पृथ्वी को सांत्वना दिया, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो वहाँ पर वो अभी भी वो चिन्ह है बलराम जी के अंगूठे का, जो उन्होंने पृथ्वी को दबाया हुआ है, वो बंगा बलराम जी का जो दुपट्टा गिरा हुआ है उसका भी वहाँ पर चिन्ह है। तो उसके बाद में ये दोनों आकाश में छलांग लगाया उन्होंने, और वो छलांग लगड़ के एक सुर को पकड़ा और दोनों साथ में ऐसे पहाड़ पर गिर गए, जिस पहाड़ पर वो बच्चों को छुपा कर रखा था। तो भगवान ने ऐसे माला पहनी थी, और जब भगवान वापस गिरे तो उनके हाथ और घुटने से वो उस पहाड़ पर ऐसे उतर गए, हाँ गिरे नहीं मतलब वो जब टिके वहाँ पर, तो वो घुटनों का और उनका हस्तों का और माला का वहाँ पर चिन्ह है एक शिला में, इतना सुंदर जगह है वो। तो फिर बाद में भगवान ने उसका वध कर दिया और बच्चों को गायों को सब रिहा कर दिया। और वही वो पहाड़ है जहाँ पर एक बहुत ही आनंददायी जगह है, उसका नाम क्या है, फिसलिनी शिला, स्खलन शिला, स्लाइड रोल। दुनिया में मेरा ऐसा अनुभव है, मैंने बहुत बार यहाँ पर यात्रा को लेके गए हैं, दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो बड़े गंभीर रहा करते हैं, कभी हंसते नहीं हैं, हर चीज़ को गंभीरता से लेते हैं, विचार करते हैं। प्रोफेसर लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत ऐसे PhD टाइप ऐसे बड़े पद पे होते हैं, उनके नीचे बड़े लोग होते हैं, उनके सामने कभी भी अपना संतुलन नहीं खोते वो उसे। वो सारे व्यक्तियों को मैंने वहाँ पर बच्चा बनते हुए देखा है, पिछलनी पहाड़ में। जब वो वहाँ पहुँचते हैं ना, सब कुछ भूल जाते हैं, धूप छाँव ठंडी वंडी सब भूल जाते हैं, और सब फिसलने लगते हैं। और हम कथा में कहते हैं कि 7 बार जो फिसलेगा वो गौलोक धाम जाएगा, ऐसे शास्त्र में लिखा है। एक बार नहीं, 7 बार फिसलेंगे इसके अंदर। उनका शरीर ऐसा बुढ़ा है क्योंकि बहुत बुजुर्ग है वगैरह, मुमकिन नहीं है, लेकिन वो बोला हाथ पकड़ा अपना कराए से बना कराए से। तो हम कहते हैं, मतलब हमने बहुत प्रोफेसर्स, हमने मैडम कुलकर्णी वगैरह सबको लेके गए, तो मैडम कुलकर्णी इज वेरी सीरियस लेडी। अरे वहाँ जाने के बाद हमारी मैडम कुलकर्णी, यू नो हाउ हैप्पी शी वॉज, यू नो शी वॉज रोलिंग। आई सेड मैडम आई विल टेक पिक्चर एंड पब्लिश इन पेपर टुमारो। अभी लेटली मैं किसी को लेके गया था वहाँ पर, वैसे बहुत बुजुर्ग थे, उनको भी मैंने बताया, माता जी आज मैं आपका फोटो निकाल के इसको पब्लिक पेपर में छापूंगा। सो हैप्पी, यू नो लाइक रोलिंग। और आप कितने भी थके होंगे यात्रा में, आपको भोजन नहीं मिला होगा, आपको जल नहीं मिला होगा, आप सोचते होंगे प्रभु जी कितना कथा कर रहे हैं, कब समाप्त करेंगे, कब भोजन खिलाएंगे, ये सारी भावना आपके मन में कथा में चलती रहती ना। हो सकता है अभी भी आप सोचते होंगे पर क्या अभी क्या चल क्या रहा है, 10:30 हो गया अभी भी चल रहा है, ऐसा विचार कई लोगों के मन में रिपल्स ऐसे आते रहते हैं बीच बीच में, क्योंकि यहाँ से आवाज आती है, कभी इधर से आवाज आती है, कभी यहाँ से आवाज आती है, यहाँ से भी आती है घुटने में से, तो फिर वो सोचना पड़ता है ना क्या हो रहा है। इतना सब होने के बाद भी जब आप फिसलनी पहाड़ी में लोगों को लेके जाएंगे, वो सब वह ना वो एकदम विरक्त संत बन जाते हैं, भूख प्यास सब उनकी मिट जाती है एकदम तुरंत, और एकदम बालक बनकर अपना जो अस्तित्व है। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ कि मैंने ये अद्भुत चमत्कार वहां पर लोगों को अंदर देखे हुए हैं। ऑल यूर सो कॉल्ड प्राइड ऑफ बींग सो एंड सो एंड सो वहां खत्म हो जाता है। वो यू आर, आपका कौन सा बड़ा पद है, आप काउंसलर हैं, आप गुरु हैं, आपके इतने शिष्य हैं, आपके इतने बच्चे हैं, इतने विद्यार्थी हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपका शरीर बहुत बड़ा है और आपको भूख लगी है, आपको बहुत नाराज भी हैं, आपको खाना नहीं मिला है, ये सारी जो बाह्य चीज़ें हैं उनसे आदमी जो है वहाँ जाने के बाद तुरंत विरक्त हो जाता है, इमीजिएटली यू गेट डिटैच्ड। सो वॉट इज डिटैचमेंट यू कैन एक्सपीरियंस एट पिछलनी शिला, कि वैराग्य क्या चीज़ होती है, इसको अनुभव करना है, चलिए पिछलनी शिला, और वहां आप ये भी भूल जाएंगे कि आपकी उम्र क्या है। सबसे बड़ी बात तो अपनी है कि मैं अभी ये साल का हो गया, मैं तो अभी लड़की हूं, मैं अभी लड़का हूं, बालक हूं, बुजुर्ग हूं वगैरह वगैरह, हाँ बड़ा सिंगर हूं मैं, बड़ा कलाकार हूं, ये सारी जो टोपियां हैं वो फिसली शिला पे फिसल जाती हैं, और आदमी उससे कुछ समय के लिए क्यों ना हो मुक्त हो जाता है। ऐसी बहुत ही अद्भुत जगह वहां पर है, और उसी के पास में वो बलराम जी के चरण का चिन्ह है, वो रोड लेवल पे है, ये थोड़े पहाड़ में है। और फिसलनी शिला में भी समय थोड़ा हो गया है, एनीवेज जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे। वहाँ पर जब एक बार ग्वालबाल और गोपियाँ सब साथ में विहार कर रहे थे, तो गोपियों ने कहा, अरे कन्हैया हमने सुना तुम पिछले जन्म में राम थे। बोला, कौन राम? आई डोंट नो, मैं तो नंद महाराज का लड़का हूँ, ये सब बेकार की बात है। नहीं नहीं, हमने सुना है, आचार्य गुरु बताते हैं सब लोग कि आप पिछले जन्म में रामचंद्र थे। तो वो बार बार नहीं 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 करते हैं, नहीं कस्स कस्स मी कौन मी कुटे, नहीं 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 नहीं। तो गोपियाँ पहले उसको प्रेम से बोलते, देखो ज़्यादा नाटक मत करो, अगर आप हमें अभी अपना राम और बलराम का रूप, राम और लक्ष्मण का रूप नहीं दिखाएंगे तो हम आपसे नहीं मिलेंगे और बात नहीं करेंगे। अभी श्री कृष्ण भगवान जो है ना, उनके लिए सबसे बड़ी धमकी है ये, बिगेस्ट धमकी। अगर ग्वाल बाल कहेंगे कि आपको कल खेल में नहीं लेंगे, आप बड़े ऐन मौके पर हार रहे हो तब माँ का नाम लेकर भोजन के लिए जा रहे हो, ये बहुत होशियारी करते हो आप, कल आपको खेल में एंट्री नहीं देंगे, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी धमकी है। वो माता का आदेश तोड़कर दोबारा खेल में जाते हैं खेलने के लिए, क्योंकि मुझे रोज भी कल भी खेलना है इनके साथ में, परसों भी खेलना है। हाउ मच ही लव्स हिम, जो ब्रह्मा जी उनको इतनी बड़ी लंबी प्रार्थना सुना रहे पश्चाताप वाली, कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, गलत किया, फिर नहीं करेंगे, ये माफ़ करना भगवान। भगवान सोच रहे कब समाप्त करोगे यार, जल्दी समाप्त करो, मुझे खेलना है उनके साथ में, वो वेट कर रहे हैं मेरे लिए। या मैंने कह रहा हूं, ये बृहद भागवतामृत में भगवान ने स्वयं लिखा है कि जब ब्रह्मा जी ऐसी बड़ी बड़ी श्लोकों वाली कॉम्प्लिकेटेड प्रार्थना कर रहे थे तब मेरा दिल कहां था कि कब जाऊंगा लौट कर ग्वाल बाल के हाथ गुल्ली डंडा खेलने के लिए। हाँ, तो ये कहां से निकली कथा? हाँ हाँ, तो वो कहते हैं कि आपको धमकी देते हैं, मतलब धमकी दे देते पूरी। तो भगवान कहते आंखें मीच लो, वो तुरंत आंखें बंद कर लेते, बोलते आंखें खोल लो, तुरंत रामेश्वर के किनारे पहुंच जाते सब लोग, और वहां पर इतना बड़ा सागर है और कृष्ण बलराम राम और लक्ष्मण के धनुष धारण करके, हाँ वो दुर्वा का रंग है उनका और उसे विशाल शरीर देखे, अभी सब बंदर, सब ग्वाल बाल सब बंदर बन जाते। हाँ, कोई चाहिए ना किरदार अपने लिए, तो भाई वो लड़कियां गई प्रेक्षक प्रेक्षक बनने के लिए, तो सब वो ऑडियंस में बैठी हुई है, सब ग्वाल बाल बंदर बने हुए हैं और सब लोग बड़ा बड़ा पत्थर डाल रहे हैं उसके अंदर। उधर जहाँ खड़े थे वहां पर पूरा समुद्र है, उधर उनकी आंखों के सामने अभी देखो कैसा ना, उनको तो बहुत टाइम लगा बनाने के लिए, इतना टाइम इनके पास नहीं है, तो उन्होंने कुछ सेकंड में पहाड़ पूरा सेतु बना दिया उधर सबके आंखों के सामने। कुछ सेकंड के अंदर रावण प्रकट हो गया उस वो सेतु के एंड में से दशानन गर्जना करते हुए, और कुछ क्षण के अंदर पूरा रामायण का वॉर फिनिश हो गया, और राम ने बड़े वीरता के साथ, लक्ष्मण ने इंद्रजीत को, राम ने उनके सामने रावण का वध कर दिया, रावण धराशायी हो गया और सीता मैया को लेकर राम लौट के आए वापस। फिर कहा आंखें बंद करो, आंखें बंद कर दिया, खोलो, खोल दिया, तो समुद्र वही वैसे ही, सेतु भी वैसे ही, रामेश्वर भी वैसे ही, लंका भी वैसे ही, लेकिन राम और लक्ष्मण के बदले में कृष्ण बलराम और ग्वाल बाल सब बंदर के बदले में ग्वाल बाल। तो ये लीला कई बार हुई है अलग अलग प्रकार से। एक बार ऐसा हुआ है कि वो कृष्ण और बलराम जो है ना, वो चार कृष्ण राधा करके राधा रानी के सामने बहुत ऐसा अपना बखान कर रहे थे, देखो मैं कितना महान हूँ, जानते हो वही हूँ मैं, मत्स्य कुर्म वराह वामन नरसिम ये सब मैं हूँ, राम भी मैं हूँ, सब थाका मार के हंसने लगे, ये देखो ये पागल लड़का, ये राम है क्या? तो बहुत चिढ़ाया उसको, उन्होंने बहुत बुरा बखान किया, उन्होंने बहुत चिढ़ाया उनको, दिखाऊं क्या? हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो उन्होंने ये लीला दिखाया उनको। और एक बार राधा रानी और कृष्ण भगवान के संगन मत से, हाँ दोनों के विचार से, उन्होंने कहा हम अब ये लीला करेंगे, तो उन्होंने वो लीला प्रस्तुत किया। ऐसे प्रकार से मैं जब पहली बार गया था ना, एकदम दंग रह गया उसको देख के, वो इतना स्थान अद्भुत है कि कुछ नहीं है, उधर बीच में एक बड़ा पत्थर का ऐसा सेतु वहां से वहां पहुंचता है, उधर रामेश्वर का लिंग है जहां पर स्वयं राधा रानी की आंखों के सामने प्रभु रामचंद्र ने, जो कृष्ण थे, उन्होंने वहां पर लिंग स्थापन किया, उसकी पूजा की बाकायदा, और फिर सेतु बंध आरंभ किया। वो पूरा सुंदर स्थान है, बीच जंगल में है, बहुत अंदर है, इतना आनंद है वहां पर। अभी टाइम तो हो गया ना, अभी समाप्त होना चाहिए, क्या विचार है आपका? काम में वन बहुत अमर्याद है, वो भी तो शाम तक समाप्त नहीं होगा अगर वो चलता रहेगा तो। एनीवेज वहां पर एक कथा आपको बताते हैं, जब भगवान का जन्म नहीं हो रहा था, मतलब भगवान ने जन्म नहीं लिया, तो नंद बाबा बड़े वृद्ध हो रहे थे, यशोदा माई भी वृद्ध हो रही थी, तो वो उन्होंने मन्नत मांगी कि हमको अगर पुत्र हुआ ना तो हम चार धाम की यात्रा करेंगे। चार धाम कौन से हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो यथावकाश गोकुल गए, कृष्ण की प्राप्ति हुई, बलराम का भी जन्म हुआ पहले, फिर कृष्ण का हुआ, फिर वो थोड़े बड़े भी हो गए, तो एक दिन उन्होंने तय किया कि अभी हम चार धाम की यात्रा करने जाएंगे। तो मैया कुछ बनाने लगी ऐसा आइटम जो सफर में काम आता है, तो कृष्ण आए बोले मैया क्या बन रहा है? उन्होंने कहा कि मटरी बन रही है। ये मटरी क्या होती है? बोले वो दूर समय पर जाते ना यात्रा में तो बहुत दिन टिकती है, वो काम आती है। कौन जा रहा है बाहर? बोले बाबा जो है वो वाल बालों को लेके चार धाम की यात्रा जा रहे हैं। चार धाम की यात्रा क्या होती है वो? बोले बद्रीनाथ, वो हिमालय में केदारनाथ, गंगोत्री जहाँ गंगा का उगम होता है, ये यमुना जी का उगम होता है, वहाँ जाएंगे। और क्यों जाएंगे वहाँ पर? वहाँ जाने से आपकी जो मन्नत मांगी है वो हम लोग पूरा करेंगे। तो इनको ये बात अच्छी नहीं लगती। जब भी बाबा बाहर जाने का बात करते हैं तो लाला को बहुत दुख होता है। तो कहते ठीक है, बाबा आते हैं, उनको पूछते बाबा क्यों जा रहे हैं आप? उन्होंने मन्नत मांगी थी, मन्नत पूरा करना चाहिए। बोले तो आंखें बंद कर लो, तो वो आंखें बंद कर लेते हैं। सारे ग्वाल बाल भी आते हैं, मतलब निकल रहे ना अभी, वो सफर के लिए तैयारी करके निकल रहे हैं। तो आंखें बंद करो, फिर आंखें खोलो, तो सब लोग अपने आप को हिमालय के बीच में पाते हैं, इन द मिडल ऑफ हिमालयस। उनकी आंखों के सामने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हर की पैड़ी, हाँ हर जगह जो है ना, वो जो सुक्ताल वो एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेड देयर, जो भी आपको आज दिखाई पड़ता है सब कुछ वहां मैनिफेस्ट हो गया। बोला कर लो स्नान। साहब ग्वाल बाल बड़े खुशी से गए। हाँ वो क्या महात्म्य उसका है कि हिमालय इतना ऊंचा है, ऑक्सीजन की कमी है वहां पर, इतनी ठंड है वहां पर, इतना कष्ट है पहुंचने के लिए, इतना किलोमीटर तो बस को छोड़ने के बाद में चढ़ना पड़ता है, उसके बाद में वो स्नान का दर्शन होता है। बर्फ के अंदर हम लोग गए थे, नंगे पैर गए थे ना, इतना पैर लकड़ी जैसा हो गए थे हमारे, क्योंकि हमको बताया गया था कि नंगे पैर में बद्रीनाथ की बद्री विशाल की आरती देखनी है, तो रूम से बद्री विशाल तक और वहां पर जितनी देर आरती हो रही है वहां, उसके बाद में रूम, वहां से नंगे पैर रूम तक। लग रहा था कि जल्दी क्यों नहीं आरती समाप्त होती। इतना कष्ट है वहां पर इतना दर्शन करने के लिए। लेकिन ये दर्शन कैसा है, बहुत छोटे पर्वत, वही वातावरण, ना कोई बर्फ है ना कोई ऑक्सीजन की कमी है, एकदम बहुत सुंदर वातावरण, प्रेम से सब दर्शन कर रहे हैं। सब लोगों ने बड़े प्रेम से गंगा में, जमुना में, बद्री विशाल, केदारनाथ सबका दर्शन किया बहुत सुंदर, और लौट के आए। भगवान ने क्या बताया, ब्रज के बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी तीर्थ यहाँ पर आश्रय ले चुके हैं। हर तीर्थ इस रामायण के सेतु बंध, रामेश्वर, श्रीलंका, हाँ आदि बद्री केदार, ये सब वहाँ प्रकट है। लीला समाप्त हुई, आदि बद्री केदार वहीं रहे, क्योंकि सबको इच्छा है, सब धाम जो है व्यक्ति स्वरूप भक्त है भगवान के, वो भी व्यक्ति है और वो भगवान की सेवा में धाम बन के, तीर्थ बन के रह रहे हैं, और उनके अंदर आके लोग बहुत सारा अपना पाप छोड़ के जाते हैं। तीर्थ यात्रा में तो पाप नाश होता है, तो धाम को स्वीकार करना पड़ता है उसको, तो वो धाम पुरुष जो है, भक्त जो है, वो अपने आप को शुद्ध करने के लिए ब्रज में जाता है और आश्रय ग्रहण करता है। ये मत समझना कि खाली आप ही यात्रा करते हो, सब धाम भी यात्रा करते हैं। प्रयागराज ने भी अक्षय तृतीया में आके नंद सरोवर में स्नान किया था, तब भी बाबा निकले थे अक्षय तृतीया, मतलब उधर त्रिवेणी में स्नान करने के लिए, तभी भी उन्हें कहा था कि कल जाओ आप, कल, आज मत जाना, कल अक्षय तृतीया है। बाबा बोले ठीक है। तो नेक्स्ट देखा तो स्वयं प्रयागराज उनकी कुंड में स्नान कर रहे हैं, और ना केवल प्रयागराज, बस गंगा, जमुना, सरयू, सरस्वती, भीमा, कावेरी, जितनी भी नदियां हैं, सब अपना काला शरीर लेकर वहां पर आए हैं, और नंद भवन में, नंद सरोवर में स्नान करके, प्रयागराज भी काले रंग के थे, सब लोग स्नान करके एकदम तेज पुंज प्रभाव कांति के हो गए, सब पाप। उन्हें कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उन्हें कहा कि साल भर में लोग हमारे अंदर पाप छोड़ते हैं और साल में एक दिन हम लोग CL लेते हैं। नो क्रिसमस, नो दिवाली, नथिंग, नो गणपति, नो नवरात्रि, ओनली वन डे अक्षय तृतीया। तब हम लोग वहां से आते हैं और आपके सरोवर में स्नान करते हैं और सब पाप की मुक्ति होकर, शुद्ध होकर, पुनीत होकर वापस अपनी सेवा में चले जाते हैं। नंदबाबा बोलते हैं प्रयागराज का ट्रिप कैंसल, रिफंड नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन हम नहीं जाएंगे अभी। इस तरह से सारे तीर्थ जो है वो ब्रज में विराजमान है। तो काम्यवन तो उसको आगा रहे, उसमें गया कुंड है, एक गया कुंड, हाँ आप जानते ना बिहार में इतनी बड़ी गया है, उधर जाके लोग तपस्या अपना श्राद्ध करते हैं। तो जब यही गया, जब ब्रज में काम्यवन प्रकट होती है, तो उसका क्या महात्म्य है कि केवल आपको वहां अपने शरीर से पहुंचना है, नंबर वन, और नंबर टू आपको केवल आपके पुरखों की याद करनी है जो शरीर छोड़ के चले गए हैं, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एज सुन एज यू गो देयर फिजिकली एंड रिमेंबर योर डिपार्टेड रिलेटिव्स, उन सबको पाप मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति तो होती है, लेकिन कृष्ण प्रेम की और गोलोक धाम की भी प्राप्ति होती है, और वहां पर जाकर आपने जिसका स्मरण किया है उसका दोबारा श्राद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, तो वो इकोनॉमिकल भी होता है। तो एक इसका तात्पर्य क्या है, जो भी धाम अपने अपने जगह पर है उनका अपना अपना एक महात्म्य है, लेकिन वही धाम जब ब्रज में आके आश्रय ग्रहण करते हैं उनका बेनिफिट अलग है, वो सबके अंदर वो कृष्ण प्रेम और गौलोक प्राप्ति देने की क्षमता भगवान की कृपा से, श्री वृंदावन धाम की कृपा से प्राप्त होती है, क्योंकि वो भगवान का निज धाम है, भगवान का घर है। इसलिए आप सबको श्री वृंदावन धाम की स्मृति सदा मिलती रहे, यही हमारी राधा मदन गोपाल जी से प्रार्थना है, और जहाँ पर भी आप रहें, जहाँ पर भी आपका शरीर आपको ले जाए अपने कर्मों के माध्यम से, वो सब जगह पर आपको श्री वृंदावन की स्मृति बनी रहे, यही मेरी गुरु महाराज और भगवान के चरणों में सिंसियर प्रार्थना है। श्री वृंदावन धाम की,
श्री राधा मदन मोहन भगवान मदन गोपाल जी भगवान की जय हो।